आगे सबक देखिए भाई, قال ويجوز الشركة وإن لم يخلط المال وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا تجوز لأن الربح فرع المال ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنه بالخلط وهذا لأن المحل هو المال ولهذا يضاف إليه ويشترط تعيين رأس المال. بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے شرکت عینان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ شرکت عینان جو ہے وہ وکالت پر منعقد ہوتی ہے نہ کہ کفالت پر. چنانچہ دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں اور کفیل نہیں ہوتے الا یہ کہ دونوں اس کو خود آپس میں طے کر لیں تو پھر کفیل بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ شرکت عینان عام بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی ہو سکتی ہے. شرکت عینان کے خاص ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں شریک ایک خاص نوع کی تجارت کو متعین کر دیتے ہیں کہ دونوں اس کے اندر تجارت کریں گے. مثلا دونوں کپڑے کی تجارت کریں گے یا دونوں غلے کی تجارت کریں گے یا دونوں برتنوں وغیرہ کی تجارت کریں گے. تو دیکھو یہ خاص قسم کی تجارت کو متعین کر دیا تو یہ شرکت عینان جو ہے یہ خاص ہے. اور بعض اوقات شرکت عینان عام ہوتی ہے یعنی دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی تجارت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے البتہ نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے. اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ شرکت عینان وکالت پر اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ اس شرکت کا مقصد حاصل ہو سکے. اور شرکت کا جو مقصد ہے وہ نفع کے اندر شرکت ہے. اور نفع کے اندر شرکت تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل ہوں بھائی. اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ عینان کا لفظ اعراض سے مشتق ہے. میں نے بتلایا یہاں اشتقاق سے اشتقاق معنوی مراد ہے یعنی معنی کے اعتبار سے عینان اعراض سے مشتق ہے کیونکہ دونوں کا معنی ایک جیسا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عنا اور اعراضا دونوں کا صلہ اگر عن آئے تو اس کے معنی اعراض کرنے کے اور رخ پھیرنے کے ہیں. اعرض زید عن عمرو زید نے عمر سے اعراض کیا یا عن زید عن عمرو اس کا بھی وہی معنی کہ زید نے عمر سے اعراض کیا. البتہ اگر اعرض اور عنا کا صلہ عن نہ آئے تو پھر ان کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کے. تو عینان کو بھی عینان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دونوں شریکوں کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ آپس میں عقد شرکت کر لیں یعنی ان کی یہ رائے بنی کہ وہ آپس میں عقد شرکت کر لیں. معلوم ہوا عینان کا لفظ جو ہے وہ کفالت کا تقاضا نہیں کر رہا لہذا اس کے ذریعے کفالت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں مفاوضہ کا لفظ جو ہے وہ کفالت کا تقاضا کرتا تھا اس لیے کیونکہ مفاوضہ کا معنی برابری کے ہیں اور دونوں شریکوں میں برابری تبھی ہو سکتی ہے جب ایک شریک سے جس چیز کا مطالبہ ہو دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا سکے. تو لہذا عینان کا لفظ جو ہے وہ برابری اور مساوات کا تقاضا نہیں کر رہا لہذا اس کی وجہ سے کفالت ثابت نہیں ہوگی. کفالت کے لیے کوئی الگ دلیل چاہیے. دو دونوں شریک اگر آپس میں الگ طے کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں گے تو پھر اس صورت میں کفالت ثابت ہوگی لیکن خود لفظ عینان سے کفالت ثابت نہیں ہو سکتی بھائی. اور پھر یہ بھی بتلایا صاحب ہدایہ نے کہ شرکت مفاوضہ کے اندر تو دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا ضروری ہے یعنی مال شرکت جس مال میں شرکت ہو سکتی ہے اور وہ درہم دینار اور فلوس نافقہ ہیں جبکہ شرکت عینان کے اندر دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں. ایک شریک کی طرف سے کم مال ہو اور دوسرے شریک کی طرف سے زیادہ مال ہو اور اس پر آپس میں شرکت عینان کر لیں تو یہ بھی جائز ہے. اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ شرکت عینان میں یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریکوں کا مال تو برابر ہو شرکت کے اندر لیکن نفع کے اندر کمی بیشی ہو. مثلا زید کا مال بھی 50%, عمر کا مال بھی 50%, لیکن زید کے لیے 70% نفع طے ہوا اور عمر کے لیے صرف 30%. 20% नफा तय हुआ तो यह भी जायज है। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, अगर माल के अंदर बराबरी हो तो नफे के अंदर भी बराबरी होगी, नफे में कमी बेशी जायज नहीं होगी। इसलिए क्योंकि जैद का माल जब 50% है तो नफा भी उसका 50% ही होना चाहिए। 50% से जायद अगर आप उसको नफा देंगे तो इसमें रिफ़ु मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी और रिफ़ु मालम युजमन तो जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। चुनांचे इसीलिए याद रखो, बैअ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब तक इंसान मबीए पर कब्जा न कर ले तब तक उसके लिए वो मबीहा आगे बेचना जायज नहीं है। वजह यह कि जब कोई चीज आपके कब्जे में आ जाती है तो अब वो आपके जमान में आ गई, अब अगर वो चीज हलाक हुई तो आपका अपना माल जाया होगा, और जब तक आपने एक चीज पर कब्जा नहीं किया तो चीज आपके जमान में नहीं, जब आपके जमान में नहीं तो आप उसे आगे भी नहीं बेच सकते। तो बात चल रही थी शिरकत ऐनान की। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला फरमाते हैं शिरकत ऐनान के अंदर अगर माल बराबर है तो नफा भी बराबर होगा, और अगर नफे में कमी बेशी करेंगे तो रिफ़ मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी और यह जायज नहीं। और नीज वो फरमाते हैं कि जो नफे के अंदर शिरकत आती है यह असल यानी सरमाए के अंदर शिरकत की वजह से आती है, और जब सरमाए के अंदर बराबरी है तो नफे के अंदर भी बराबरी होगी। तो उनके नजदीक ये जो नफा है यह सरमाए के अंदर अफजाइश के दर्जे में है, जबकि हमारे नजदीक नफे में कमी बेशी जायज है। हम दलील के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल जिक्र करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिफ़ु अला मा शरता, कि नफा उसी के बकदर होगा जितना दोनों शरीक आपस में तय कर लें, वल वज़ीअतु अला क़द्रिल मालैनी, और खसारा जो है वो दोनों मालों के बकदर होगा। मैंने आपको बतलाया था कि शिरकत का अहम ज़ाबता है भाई, इंदल अहनाफ जब भी नुकसान होगा तो नुकसान माल के बकदर होगा, अलबत्ता नफे के अंदर कमी बेशी जायज है भाई। तो हम कहते हैं कि इस हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुतलकन फरमाया अर्रिफ़ु अला मा शरता, नफा उसी के बकदर होगा जितना आपस में दोनों शरीक तय कर लें। यहां हदीस के अंदर यह जिक्र नहीं किया गया कि नफे का माल के बकदर होना जरूरी है। मालूम हुआ नफे में कमी बेशी जायज है। और नीज हम कहते हैं कि नफे का मुस्तहिक इंसान हमेशा माल की वजह से ही नहीं बनता, बल्कि कभी अपने अमल की वजह से भी इंसान नफे का मुस्तहिक बन जाता है। जैसे मुजारबत के अंदर है, माल एक का होता है, अमल दूसरे का होता है, और जो अमल करने वाला है यानी मुजारिब वो भी नफे का मुस्तहिक होता है। मालूम हुआ नफे का मुस्तहिक इंसान सिर्फ माल की वजह से नहीं होता बल्कि अमल की वजह से भी होता है। और नीज बाज औकात दोनों शरीकों में से एक जो है वो तिजारत का ज्यादा माहिर होता है या ज्यादा काम करने वाला होता है तो वो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगा कि उसका और उसके शरीक का नफा आपस में बराबर हो गई। जाहिर सी बात है जो शख्स ज्यादा माहिर है या जो ज्यादा अमल करने वाला है वो अपने लिए ज्यादा नफे का मुतालबा करेगा भाई। तो लिहाजा नफे के अंदर कमी बेशी की जरूरत पेश आती है, और जब किसी तसरुफ की जरूरत पेश आ जाए तो शरीयत उस तसरुफ की इजाजत देती है। तो लिहाजा जरूरत और हाजत की वजह से नफे की कमी बेशी भी जायज होगी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाय ने एक मोहतरिस के एतराज का जवाब भी जिक्र किया। मसलन एक मोहतरिस एतराज करता है कि अक़्दे शिरकत के अंदर सारा नफा एक ही शरीक के लिए मुकर्रर करना यह जायज नहीं है। जब सारा नफा एक शरीक के लिए मुकर्रर करना जायज नहीं तो नफे की ज्यादती भी एक शरीक के लिए जायज नहीं होनी चाहिए। तो उसका जवाब दिया था कि नहीं, अगर सारा नफा एक ही शरीक के लिए मुकर्रर किया जाए तो इस सूरत में यह अक़्द शिरकत से निकल जाए, ये तो शिरकत बाकी ही नहीं रहेगी, क्योंकि अक़्दे शिरकत का मकसद तो नफे के अंदर शिरकत थी, और जब नफे के अंदर शिरकत ना रही तो अक़्दे शिरकत भी बाकी ना रहा। नीज इसी तरह मुजारबत के अंदर माल जो है वो रब्बुल माल का होता है और अमल जो है वो मुजारिब का होता है, तो इसके अंदर भी अगर सारे नफे की शर्त जो है मुजारिब या रब्बुल माल के लिए लगा दी जाए तो अक़्दे मुजारबत ही बाकी नहीं रहेगा, या तो यह कर्ज बन जाएगा या बिज़ाअत बन जाएगा। मसलन मुजारबत के अंदर अगर सारे नफे की शर्त जो है वो मुजारिब के लिए यानी साहिब अमल के लिए लगा दी तो फिर तो ये मुजारबत ना रहा, ये तो कर्ज बन गया। गोया रब्बुल माल ने कुछ माल मुजारिब को कर्ज दे दिया है कि इसके जरिए तिजारत करो, नफा कमाओ, सारा नफा तुम्हारा ही होगा, बाद में मेरा रासूल माल मुझे वापस लौटा देना। तो ये तो मुजारबत ना रही बल्कि क्या बन गया, कर्ज बन गया। और इसी तरह अगर मुजारबत के अंदर सारे नफे की शर्त जो है रबुल माल के लिए लगा दी जाए तो फिर तो ये मुजारबत ना रहा बल्कि ये बिजात बन गया। बिजात इसे कहते हैं, मसलन जैद तिजारत कर रहा है और उसकी तिजारत ठीक तरह चल रही है, अब उसे अमर कहता है कि तुम अपने कारोबार में मेरा सरमाया भी शामिल कर लो और मेरे माल से जो नफा हासिल हुआ करे वो मुझे दे दिया करो, तो जैद इस बात पर राजी हो जाता है। तो अब देखो जैद के कारोबार में अमर का सरमाया लगा और अमर के सरमाए का सारा नफा जो है वो अमर ही को दिया जा रहा है, इसको कहते हैं बिजात भाई, इसको क्या कहते हैं बिजात। तो अगर मुजारबत के अंदर सारे नफे की शर्त जो है वो रबुल माल के लिए लगा दी जाए फिर तो ये बिजात बन जाएगा, ये तो मुजारबत बाकी ही ना रहेगी भाई। और फिर साहिब हिदाय ने इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमोल्ला की दलील का जवाब भी जिक्र किया। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमोल्ला फरमाते थे कि शिरकत ऐनान के अंदर जितना माल होगा उतना ही नफा भी होगा, नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं, वरना रिबहु मालम युजमन की खराबी लासिम आएगी। तो उसका जवाब दिया कि ये जो शिरकत ऐनान है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है और इसकी मुशाबहत शिरकत मुफावजा के साथ भी है। जैसे शिरकत मुफावजा वो शिरकत है और नीज उसमें दोनों शरीक अमल करते हैं, इसी तरह शिरकत ऐनान भी शिरकत है और इसमें दोनों शरीक जो है वो अमल करते हैं, और नीज इस शिरकत ऐनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है। मुजारबत के अंदर माल एक का होता है और उस माल के अंदर दूसरा शख्स अमल करता है, तो शिरकत ऐनान के अंदर भी दोनों शरीक जो है दोनों ने अपना माल मिलाया हुआ है, तो हर शरीक अपने माल में भी अमल कर रहा है और अपने शरीक के माल में भी अमल कर रहा है, तो यह मुजारबत के भी मुशाबे हो गया। तो ईनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है और मुफावजा के साथ भी है, तो हमने दोनों मुशाबहतों पर अमल किया, दोनों मुशाबहतों पर अमल किया, लिहाजा मुजारबत के अंदर जिस तरह रिफ मालम युजमन जायज है इसी तरह शिरकत ऐनान में भी रिफ मालम युजमन जायज है, और नीज जैसे मुफावजा के अंदर दोनों शरीक अमल करते हैं इसी तरह ऐनान के अंदर भी दोनों शरीकों का अमल करना जायज है। मैंने आपको बतलाया था कि मुजारबत के अंदर माल जो है वो रब्बुल माल का होता है और अमल जो है वो मुजारिब का होता है। अगर अक़्द मुजारबत के अंदर रब्बुल माल के भी अमल की शर्त लगा दी जाए तो ये अक़्द मुजारबत ही बातिल है। तो लिहाजा ये जो शिरकत ऐनान है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है, और मुजारबत के साथ तो मुशाबहत तकाजा करती है कि शिरकत ऐनान में भी दोनों के अमल की शर्त लगाई जाए, तो इसे भी बातिल होना चाहिए। लेकिन इस ऐनान की मुशाबहत मुफावजा के साथ भी है और उसके अंदर तो दोनों के अमल की शर्त होती है, लिहाजा इसके अंदर भी दोनों के अमल की शर्त जायज होगी और उससे शिरकत ऐनान बातिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि शिरकत ऐनान के अंदर जरूरी नहीं है कि हर शरीक अपने पूरे माल पर आकदे शिरकत करे, बल्कि अपने बाजे माल पर भी आकदे शिरकत करना जायज है भाई। और नीस जिस तरह शिरकत मुफावजा के अंदर सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका पर शिरकत जायज है, सामान वगैरह और मकीलात और मौजूनात में शिरकत जायज नहीं, क्योंकि इस सूरत में रिबह माला म्यूजमन की खराबी लाजिम आती है। इसी तरह शिरकत ऐनान के अंदर भी उन्हीं चीजों पर शिरकत जायज है जो तायीन से मुतायन नहीं होती, यानी दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका, जबकि सामान वगैरह जो है वो तो तायीन से मुतायन हो जाते हैं, लिहाजा उनमें शिरकत ऐनान जायज नहीं, वरना तो रिबह मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी और वो तो जायज नहीं है। और फिर यह भी बतलाया कि शिरकत ईनान के अंदर यह भी जायज है कि एक की तरफ से दिरहम हो और दूसरे की तरफ से दीनार हो, या एक की तरफ से सफेद दिरहम हो दूसरे की तरफ से स्याह दिरहम हो, फिर भी शिरकत ईनान हमारे नजदीक जायज है। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमहुमल्ला जो हैं वो फरमाते हैं कि शिरकत के अंदर माल का मिलाना जरूरी है, माल को इस तरह मिलाया जाए कि पहचान ही ना हो सके कि किसका माल कौन सा है, और जब एक की तरफ से दिरहम है दूसरे की तरफ से दीनार, या एक की तरफ से सफेद दिरहम है और दूसरे की तरफ से स्याह दिरहम है, तो फिर तो माल का मिलाना मुमकिन ही नहीं है। अगर मिला भी दिया जाए फिर भी हर एक सरमाए की अलग पहचान हो रही है, मालूम हुआ दोनों माल अभी भी नहीं मिले। जब नहीं मिले तो उनके नजदीक इस सूरत में शिरकत ईनान जायज ही नहीं है, जबकि हमारे नजदीक शिरकत ईनान में माल का मिलाना शर्त नहीं है। लिहाजा दोनों के मालों की जिंस अलग हो या सिफत अलग हो फिर भी शिरकत ईनान सही है। और यह भी आपने पढ़ा कि अगर शिरकत ईनान के अंदर दोनों शरीकों में से एक जो है वो अपने माल से अदायगी कर देता है तो वो अपने शरीक पर उसके हिस्से के बकदर रुजू करेगा, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक शिरकत के लिए जिस चीज को भी खरीदता है तो उस तसरुफ के अंदर निसफ में वो असील होता है, निसफ तसरुफ वो अपने लिए कर रहा है और निसफ तसरुफ वो अपने शरीक की तरफ से कर रहा है उसका वकील होकर। तो लिहाजा वकील जब अपने माल से अदायगी करता है तो वो मुवक्किल पर उस माल में रुजू करता है। तो यहां पर भी जब अक़्द शिरकत के अंदर दोनों शरीकों में से एक ने अपने माल के जरिए अदायगी की है, कोई बेउ शिरा की है, तो फिर वो अपने शरीक पर उसके हिस्से के बकदर रुजू करेगा। और फिर साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि अगर कोई चीज खरीदने से पहले माले शिरकत हलाक हो जाए या दोनों में से एक का माल हलाक हो जाए तो इस सूरत में अक़्द शिरकत ही बातिल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अक़्द शिरकत जो है इस माल पर हुआ था, यह माल जो है माकूदुन अलैह है और जब माकूदुन अलैह बाकी ना रहे तो अक़्द भी बाकी नहीं रहता। जैसे बेअ जो है मबीए पर मुनाकिद होती है तो मुश्तरी के कब्जे से पहले अगर बाय के पास ही मबीआ हलाक हो जाए तो माकूदुन अलैह ही बाकी ना रहा तो बेअ भी बाकी नहीं रहती। तो लिहाजा अक़्द शिरकत करने के बाद अभी दोनों में से किसी ने भी खरीदारी नहीं की थी कि उससे पहले ही दोनों का माल हलाक हो गया या एक का माल हलाक हुआ तो अक़्द शिरकत बातिल हो जाएगा। और वजह यह है कि अक़्द शिरकत के अंदर माल मुतायन हो जाता है, जैसे कि हिबा और वसीयत के अंदर माल मुतायन हो जाता है। एक शख्स दूसरे को कुछ दिरहम हिबा करता है कि ये जो सामने दिरहम मौजूद हैं ये मैंने आपको हिबा कर दिए, अभी दूसरे शख्स ने उस माल पर कब्जा नहीं किया था, अभी महूब लहू ने इन दराही में महूबा पर कब्जा नहीं किया था कि उससे पहले ही ये दिरहम दरिया में गिरे और डूब गए, तो याद रखो इस सूरत में हिबा बातिल हो जाएगा, क्योंकि जिस माल का हिबा किया था यानी वो जो महूब था वो ही बाकी ना रहा तो हिबा भी बाकी नहीं रहेगा। या इसी तरह जैद ने मरजुल मौत के अंदर वसीयत की कि ये जो 100 दिरहम पड़े हुए हैं ये वाले 100 दिरहम मेरे मरने के बाद अमर को दे देना, तो देखो यहां भी वसीयत के अंदर ये दिरहम और दीनार मुतायन हो गए हैं, लिहाजा अगर ये अमर को देने से पहले ये दिरहम और दीनार हलाक हो गए तो इस सूरत में वसीयत ही बातिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जबकि इसके मुकाबले में मुजारबत और वकालत मुफरदा जो है उसके अंदर कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता। एक शख्स ने दूसरे शख्स के साथ अक़्द मुजारबत किया है कि मैं 10 लाख रुपए तुम्हें देता हूं, तुम उसके साथ तिजारत करना और नफा हम आपस में तकसीम करेंगे। दोनों ने अक़्द मुजारबत कर लिया लेकिन रबुल माल ने अपने पास मुजारबत के लिए जो माल रखा हुआ था वो माल उससे चोरी हो गया या हलाक हो गया, तो याद रखो इससे अक़्द मुजारबत बातिल नहीं होगा, क्योंकि मुजारबत में कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता। हां जब मुजारिब इस माल पर कब्जा कर लेगा फिर अब माल मुतायन हो गया, अब माल मुतायन हो गया, लिहाजा मुजारिब के पास से अगर यह सारा माल चोरी हो गया तो इस सूरत के अंदर भी अक़्द मुजारबत खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुजारबत के लिए यह माल मुतायन था और जब माल ही बाकी ना रहा, माकूदुन अलैह ही बाकी ना रहा तो अक़्द मुजारबत भी बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह वकालत मुफरदा के अंदर भी है, मैंने बतलाया था कि जो वकालत के साथ साहिब हिदायत ने मुफरदा की कैद लगाई इसके जरिए उस वकालत को निकाल दिया जो जिमनन साबित होती है शिरकत और रहन के अंदर। अक्द शिरकत के अंदर दो शरीक आपस में अक्द शिरकत करते हैं, वो वकालत को जिक्र करें या ना करें, जिमनन वकालत साबित हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के वकील बन जाएंगे। और इसी तरह रहन के अंदर भी जिमनन वकालत साबित हो जाएगी। एक शख्स दूसरे से कर्ज लेता है और उसके पास अपनी कोई चीज बतौर रहन के रखवाता है, तो यहां पर भी वो राहिन जो है उसने गोया मुर्तहिन को वकील बना दिया कि अगर मैं तुम्हारा देन अदा न कर सका तो फिर तुम ये रहन बेचकर अपना देन वसूल कर लेना। तो मालूम हुआ शिरकत और रहन के अंदर जिमनन वकालत आती है, जबकि वकालत मुफरदा वो है जिसके अंदर बाकायदा अलग से किसी को वकील मुकर्रर किया जाए किसी काम के अंदर भाई, यानी सराहतन। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो याद रखो ये वकालत मुफरदा है भाई। तो मुजारबत और वकालत मुफरदा में कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता। तो मसलन जैद ने अमर को अपना वकील बना दिया कि जाओ मेरे लिए जाकर 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लाओ। जैद ने अभी वो माल अमर को नहीं दिया, जैद के पास से वो माल चोरी हो गया या हलाक हो गया, तो इसकी वजह से याद रखो अमर की वकालत खत्म नहीं होगी, क्योंकि वकालत के अंदर कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता। हां अगर जैद ने यह माल अमर को दे दिया कि यह 10 लाख रुपए ले जाओ और इसके जरिए मेरी गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो इस सूरत में याद रखो जब वकील ने उस माल पर कब्जा कर लिया अब यह माल मुतायन है गाड़ी खरीदने के लिए। लिहाजा अगर वकील के पास से यह माल चोरी हो गया तो इस सूरत में भी उस वकील की वकालत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो माल जो गाड़ी खरीदने के लिए दिया गया था वो बाकी ही ना रहा भाई, तो वकालत भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम ये कि शिरकत हिबा और वसीयत के अंदर कब्जे से पहले ही माल मुतायन हो जाता है, और जबकि मुजारबत और वकालत मुफरदा में कब्जे के बाद माल मुतायन होता है, कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता भाई। और यहां पर भी अक़्द शिरकत की बात चल रही है और अक़्द शिरकत के अंदर माल मुतायन होता है, दिरहम और दीनार मुतायन होते हैं, लिहाजा यहां पर भी बेशक अभी इन्होंने तिजारत शुरू नहीं की लेकिन दोनों ने अपना माल तो आपस में मिला दिया था, तो यह माल शिरकत के लिए मुतायन है, लिहाजा अगर यह माल पहले ही हलाक हो गया तो अक़्द शिरकत ही बातिल हो जाएगा, या दोनों में से एक का माल हलाक हो गया तो इस सूरत में भी अक़्द शिरकत बातिल हो जाएगा, क्योंकि अक़्द शिरकत में माल मुतायन होता है भाई। बात समझ में आ गई? और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि ये तो वो सूरत थी जब कुछ खरीदने से पहले ही वो माल दोनों का माल या माल मुश्तरका हलाक हो गया, लेकिन अगर एक ने अपने माल के जरिए कोई चीज खरीद ली और फिर उसके बाद वो दूसरे का माल हलाक हो गया तो ये खरीदी हुई चीज में अभी भी अक़्द शिरकत बाकी है, लिहाजा इस खरीदी हुई चीज के समन में जितना हिस्सा उस शरीक का बनता है तो ये मुश्तरी उस पर रुजू करेगा भाई। और फिर साहिब हिदायत ने तीसरी सूरत जिक्र फरमाई कि अगर दोनों शरीकों में से एक का माल हलाक हो गया और उसके बाद दूसरे शरीक ने शिरकत के तौर पर कोई चीज खरीदी तो क्या अब यह चीज दोनों में मुश्तरका होगी या नहीं, तो साहिब हिदायत ने बतलाया कि यहां दो सूरतें बनती हैं, या तो जिस वक्त इन्होंने अक़्द शिरकत किया था उस वक्त वकालत को अलग से जिक्र किया था या नहीं, अगर वकालत को अलग से जिक्र किया था तो मालूम हुआ वकालत भी मकसूद है यहां पर, तो अब जब एक का माल हलाक हुआ तो शिरकत तो खत्म हो गई लेकिन वकालत अभी भी बाकी है, लिहाजा दूसरे ने जब अपने माल के जरिए शिरकत के तौर पर कोई चीज खरीदी है तो यह खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी, क्योंकि अभी भी दोनों एक दूसरे के वकील हैं। और अगर अक़्द शिरकत के वक्त दोनों ने वकालत को अलग से जिक्र नहीं किया तो फिर जो वकालत साबित हुई है वो अक़्द शिरकत के जिमन में साबित हुई है, तो जब एक का माल हलाक हो गया तो अक़्द शिरकत खत्म हुआ, जब अक़्द शिरकत खत्म हुआ तो उसके जिमन में जो वकालत थी वो भी खत्म हो गई, लिहाजा उसके बाद अगर दूसरा शरीक कोई चीज शिरकत की नीयत से खरीदे भी तो वो मुश्तरका नहीं होगी, वो उसी शरीक की होगी जिसने इस चीज को खरीदा है भाई। बात समझ में आ गई? अब आइए आज के सबक पर। قال ويجوز الشركة وإن لم يخلط المال وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا تجوز। भाई अब वही बात जो पहले साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाई थी कि हमारा इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह से इख्तिलाफ है, उन दोनों के नजदीक अकद शिरकत के अंदर दोनों का माल इस तरीके पर मिलाना कि पहचान ही ना हो सके ये जरूरी है, जबकि हमारे नजदीक अकद शिरकत के अंदर माल का मिलाना शर्त ही नहीं है। चुनाचे अगर एक की तरफ से दीनार हैं और दूसरे की तरफ से दिरहम हैं तो हमारे नजदीक यह अकद शिरकत जायज है क्योंकि माल का मिलाना शर्त ही नहीं है, जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह अकद शिरकत जायज ही नहीं क्योंकि दोनों के मालों की जिन्स ही अलग है, अगर इनको मिला भी दें फिर भी दिरहम पहचाने जा रहे हैं और दीनार पहचाने जा रहे हैं, पता चल रहा है कौन सा माल किसका है और इस सूरत के अंदर तो अकद शिरकत जायज नहीं होता। तो साहिब हिदाय ने जिक्र किया था कि यह हमारा और इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह का जो इख्तिलाफ है इसको आगे चलकर हम बयान करेंगे। तो अब साहिब हिदाय अपना वादा पूरा फरमा रहे हैं और वो तफसील बयान फरमा रहे हैं भाई। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व यजूजु शिरकतु व इल्लम यखलितल माला व इल्लम यखलिता, देखो तस्निया का सीगा है, अगर उन दोनों ने न मिलाया अल माला माल को तो ये लम यखलिता तस्निया का सीगा है, लेकिन जब इबारत को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये तस्निया का जो अलिफ है ये इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर जाएगा। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयजूजु शिरकतु व इल्लम यखलितल माला कि शिरकत जायज है अगरचे दोनों माल को न मिलाएं। व काला जुफर व शाफियु रहिमहुमल्लाह तआला ला तजूजु, जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि जायज नहीं है, अगर माल को न मिलाएं तो शिरकत ही जायज नहीं है उनके नजदीक। वजह क्या, वजह आपको बतलाएंगे। वजह यह कि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह के नजदीक ये जो नफा है ये माल की फरा है। ये नफा क्या है, माल की फरा है। फरा का माना होता है शाख भाई, जैसे दरख्त की जड़ और तना होगा तो उससे आगे शाखें भी निकलेंगी और अगर जड़ या तना ही नहीं है तो शाखें भी नहीं होंगी। तो इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो नफा हासिल हो रहा है ये नफा असल माल और असल सरमाए की फरा है, लिहाजा असल सरमाए में दोनों की शिरकत होगी तो जो नफा आएगा जो फरा आएगी उसके अंदर भी दोनों की शिरकत होगी भाई। तो कहते हैं लिअन्न रिबह फरउल माली, ये उनकी दलील चल रही है भाई इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्ला की। कहते हैं लिअन्न रिबह फरउल माली, इसलिए क्योंकि ये जो नफा है ये माल की फरा है। वला यकउल फरउ अला शिरकती इल्ला बाद शिरकती फिल असली, और फरा जो है वो शिरकत के तरीके पर वाकई नहीं हो सकती, यानी फरा में शिरकत नहीं हो सकती। इल्ला बाद शिरकती फिल असली, मगर बाद इसके के असल यानी सरमाए के अंदर भी शिरकत आ जाए, सरमाए में शिरकत आ जाए दोनों की। वह अन्नहू बिल खलती, और यह सरमाए के अंदर जो शिरकत है यह मिलाने से होगी, दोनों जब अपना माल आपस में मिला देंगे और पहचान ही नहीं होगी कि किसका माल कौन सा था, तो अब माल के अंदर शिरकत आ गई, जब माल के अंदर शिरकत आ गई तो इसकी फरा यानी नफे में भी शिरकत आ जाएगी। तो कहते हैं वला यकउल फरउ अला शिरकती इल्ला बाद शिरकती फिल असली, और फरा जो है वो शिरकत के तरीके पर नहीं हो सकती जब तक कि असल यानी सरमाए में शिरकत न आ जाए। वह अन्नहू बिल खलती, और असल के अंदर जो शिरकत आती है वो तो मिलाने से आती है। वह हाजा, और ये इसलिए, तवज्जो है इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह की दलील चल रही है, कहते हैं वह हाजा और ये इस वजह से है, किस चीज की तरफ इशारा है, ये जो हमने नफे को असल माल की फरा करार दिया, माल शिरकत वो है असल और नफा उसकी फरा है, तो हमने ये जो नफे को असल माल की फरा करार दिया वो इस वजह से है। अब वो वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वहाजा और ये नफा जो है माल की फरा है। लिअन्नल महल हुवल मालू, वो इस वजह से कि जो आकद का महल है वो माल है। आकद किस पर हुआ है, माल पर। पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि अगर दो आदमियों ने आपस में अकद शिरकत कर लिया और माल मिला लिया और अभी तिजारत शुरू नहीं की थी कि ये माल हलाक हो गया, जल गया या कोई चोरी करके ले गया या दरिया में गिर गया, तो यही माल तो माकूदुन आलय था, जब माकूदुन आलय न रहा तो शिरकत भी बाकी न रही। या दोनों ने आपस में अकद शिरकत कर लिया, अभी माल मिलाया नहीं लेकिन एक का माल हलाक हो गया, तो इस सूरत के अंदर भी अकद शिरकत खत्म हो जाएगा। मालूम हुआ यह अकद शिरकत में माकूदुन आलय यह माल है, बात समझ में आ गई। तो इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि हकद शिरकत के अंदर माकूदुन अलै माल है, यानी यह माल महल है इस अकद का, इस माल के ऊपर अकद हुआ है और लिहाजा इसीलिए इस अकद की निस्बत माल की तरफ की जाती है और इसको क्या कहते हैं, अकदु शिरकती। तवज्जो है, कहते हैं ये जो दोनों ने माल आपस में मिला दिया तो ये इस माल के अंदर दोनों की शिरकत आ गई, तो ये है माल शिरकत। और इसी की तरफ अकद की निस्बत करते हैं और कहते हैं अकदु शिरकती अई अकदु शिरकतिल माली, ये शिरकत माल वाला अकद है जिसमें माल के अंदर शिरकत है, तो इस अकद को अकद शिरकत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अकद वाके हुआ है उस माल पर जिसमें दोनों की शिरकत है। तवज्जो है, तो मालूम हुआ इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्ला के नजदीक ये जो माल दोनों ने आपस में मिला दिया है ये माल जो है ये शिरकत कहलाता है। ये माल क्या है, ये माल शिरकत कहलाता है। देखो अकदु शिरकती, अशिरकत पर मैं अलिफ लाम पढ़ रहा हूं, अकदु शिरकती शिरकत का अकद, और अशिरकत से कौन सी शिरकत मुराद है, शिरकतुल माल मुराद है, हर शिरकत मुराद नहीं। तो मालूम हुआ यह अकदु शिरकत जो है असल में है अकदु शिरकतिल माल, मालूम हुआ माल के अंदर शिरकत है इसलिए इस अकद को अकदु शिरकत कहते हैं। अगर माल में शिरकत ही नहीं आती, दोनों का माल अलग अलग पहचाना जा रहा है, एक के दिरहम है दूसरे के दीनार है, या एक के सफेद दिरहम है दूसरे के काले दिरहम है, फिर तो पहचान हो रही है दोनों के सरमाए की, तो माल के अंदर शिरकत ना आई लिहाजा इस सूरत में शिरकत भी सही नहीं होगी उनके नजदीक। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं ये नफा जो है वो माल की फरा है, वह हाजा, और ये इसलिए लिअन्नल महल हुल मालू, इसलिए क्योंकि इस अकद का जो महल है वो माल है, यानी वो माल शिरकत है, वो इस अकद का महल है। वह लिहाजा युजाफू इलैही, और इसीलिए इस अकद की निस्बत की जाती है उस माल की तरफ, और क्या कहते हैं अकदु शिरकती अई अकदु शिरकतिल माली। तवज्जो है, हासिल कलाम ये उनके नजदीक इस अकद को अकद शिरकत ही इसलिए कहते हैं क्योंकि माल में शिरकत आ गई है, माल में शिरकत आ गई है। तो कहते हैं वलिहादा युजाफु इलैही, और इसीलिए जो है इस अकद की निस्बत जो है माल की तरफ की जाती है और इसे अकद शिरकत कहते हैं। व युश्तरतु तायीनु रअसिल माली, ये युश्तरतु का अतफ पीछे जो आया ना युजाफु इलैही, और युजाफु इलैही से माकबल है वलिहाजा, इसका ताल्लुक दोनों से होगा। वलिहादा युजाफु इलैही, और इसी की वजह से यह अकद की निस्बत इस माल की तरफ की जाती है। वलिहादा युश्तरतु तायीनी रासिल माली, और इसी वजह से रासुल माल की तायीन शर्त होगी, इसी वजह से रासुल माल की तायीन की शर्त लगाई जाती है। वजह यह कि रासुल माल जो है असल सरमाया जो दोनों ने पैसे मिला दिए, जैद ने भी 5 लाख मिलाए, अमर ने भी 5 लाख मिलाए, तो ये जो पैसे मिला दिए ये है असल सरमाया, और इससे आगे जो नफा कमाएंगे वो आपस में दोनों तकसीम करेंगे। तो इमाम शाफी और इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि इस अकद शिरकत में रासुल माल मुतायन होना शर्त है, रासुल माल मुतायन होना शर्त है, यानी जो दोनों ने माल मिला दिया है, ये जो माल शिरकत है इसका मुतायन होना शर्त है, ताकि इस माल के जरिए जब कुछ खरीदेंगे तो मालूम हुआ ये जो पैसे अदा हो रहे हैं ये माल शिरकत से अदा हो रहे हैं, और माल शिरकत में तो दोनों का हिस्सा है, मालूम हुआ ये जो समन अदा हो रहे हैं ये दोनों के माल में से अदा हो रहे हैं, जब समन दोनों के माल में से अदा हो रहे हैं तो आगे जो नफा हासिल होगा उसमें भी दोनों शरीक होंगे। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वलिहादा युजाफु इलैही, और इसी वजह से इस अकद की निस्बत जो है इस माल की तरफ की जाती है। वयुश्तरतु तायीनु रअसिल माली, और इसी वजह से इस अकद शिरकत के अंदर रासुल माल के मुतायन होने की शर्त लगाई जाएगी। आगे देखिए बिखिलाफिल मुजारबती, बखिलाफ मुजारबत के। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्ला की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं शिरकत के अंदर दोनों के माल का मिलाना जरूरी है, इस तरीके पर के पहचान ही ना हो सके किसका माल कौन सा है। भाई इस पर उन पर इश्काल होता है कि अकदे मुजारबत के अंदर माल एक आदमी का होता है, तिजारत दूसरा आदमी करता है और नफे को दोनों आपस में तकसीम करते हैं, तो यहां पर रबुल माल का तो माल है, मुजारिब का तो कोई माल ही नहीं है। तो नफे के अंदर तो उसका हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। आपने हमें कहा यह जो नफा है यह माल की फरा है, माल में शिरकत है तो नफे में भी शिरकत है, और हालांकि मुजारबत में तो सारा माल रबुल माल का है लेकिन वहां आप भी मानते हैं कि नफे के अंदर दोनों की शिरकत होगी, तो इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह पर एतराज होता है कि मुजारबत में तो माल के अंदर शिरकत भी नहीं फिर भी नफे के अंदर शिरकत आ रही है। तो उसका वो जवाब देते हैं कि मुजारबत ये तो शिरकत है ही नहीं, मुजारबत तो शिरकत है ही नहीं। मुजारबत के अंदर एक का माल है उसको कहते हैं रबुल माल, और दूसरे का अमल और तिजारत है और उसको कहते हैं मुजारिब। वहां पर मुजारिब जो नफे का मुस्तहिक बनता है वो अपने अमल की वजह से बनता है, माल की वजह से नहीं। गोया ये उसको उसकी मेहनत की उजरत दी जा रही है, तवज्जो है। तो मालूम हुआ कि मुजारबत जो है वो शिरकत है ही नहीं। वहां तो मुजारिब जो नफे का मुस्तहिक बनता है वो अपने अमल के उजरत के तौर पर नफे का मुस्तहिक बनता है, माल की वजह से नफे का मुस्तहिक नहीं बनता। तो कहते हैं बिखिलाफिल मुजारबती, बखिलाफ मुजारबत के, लिअन्नहा लैसत बिशिरकतिन, क्योंकि मुजारबत तो शिरकत ही नहीं है। वह इन्नमा हुआ या अमलु लिरब्बिल माली, और मुजारिब जो है वो तो रब्बुल माल के लिए अमल करता है, जिसका माल है उसे क्या कहते हैं रबुल माल, और दूसरे को क्या कहते हैं मुजारिब। तो मुजारिब रबुल माल के लिए अमल करता है और फिर वो उजरत का मुस्तहिक बनता है। तो कहते हैं वह इन नमा हुआ या अमल उली रबिल माली, और मुजारिब जो है वो रबुल माल के लिए अमल करता है, फयस्तहिक्कुर रिबहा, तो लिहाजा मुजारिब वो नफे का मुस्तहिक बनता है, उमालतन अला अमली ही, अपने अमल पर बतौर उजरत के। उमालह भाई, उमालह और इमालह ऐन के जम्मा और कसरा दोनों के साथ ये इस्तेमाल होता है, और ये उजरत को कहते हैं, किसी शख्स के अमल की जो उजरत है और जो मजदूरी है उसको उमालह कहते हैं भाई। तो कहते हैं फयस्तहिक्कुर रिबहा, तो मुजारिब जो है वो नफे का मुस्तहिक होता है, उमालतन अला अमली ही, अपने अमल पर बतौर उजरत के, अम्मा हुना बिखिलाफ ही, बाकी यहां पर ये उसके बरखिलाफ है। बात चल रही है शिरकत की, और शिरकत के अंदर इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर शरीक जो नफे का मुस्तहिक बनता है वो अपने माल की वजह से नफे का मुस्तहिक बनता है, जबकि मुजारबत इसके बरखिलाफ है, वहां पर तो शिरकत है ही नहीं भाई। तो कहते हैं अम्मा हुना बिखिलाफ ही, और बाकी शिरकत जो है वो तो इस मुजारबत के बरखिलाफ है, वहां दा असलुन कबीरुन लहा, और ये उन दोनों का बड़ा जाबता है, ये इमाम शाफई और इमाम जुफर रहिमहुमल्ला का बड़ा जाबता है। उनके नजदीक ये जो शिरकत में नफा आता है ये असल की यानी माल की फरा है। इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का बड़ा साबता क्या है कि आकदे शिरकत में जो नफा आता है वो असल माल यानी सरमाए की फरा है। तो कहते हैं वहादा असलुन कबीरुन लहुमा, और ये नफे का माल की फरा होना ये इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का बड़ा साबता है, हत्ता युअतबरु इत्तेहादुल जिन्सी, यहां तक कि जिन्स का इत्तेहाद मुअतबर होगा। याद रखना यहां पर भी हत्ता जो है तफरीअ के लिए है, इसी जाबते पर आगे साहिब हिदाया चार तफरीआत जिक्र करेंगे। जाबता बतला दिया कि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का बड़ा जाबता यह है कि जो नफा है ये माल की फरा है, और इस पर चार तफरीआत करेंगे। तो लिहाजा यहां हत्ता तफरीअ के लिए है, तो यहां हत्ता नसब नहीं देगा बल्कि युअतबरु मरफू होगा। मैंने आपको बतलाया था कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो ये कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और नीज वो हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे, यानी माकबल सबब हो माबाद के लिए, या माबाद जो है वो गाया हो माकबल के लिए। बात समझ में आ गई। तो यहां हत्ता के नसब देने की शराइत पूरी नहीं, इसलिए ये हत्ता नसब नहीं देगा। तो कहते हैं हत्ता युअतबर इत्तेहादुल जिन्सी, यहां तक कि इत्तेहादे जिन्स भी मुअतबर होगा। पहली तफरीअ भाई, इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह के नजदीक बड़ा जाबता क्या है कि ये नफा ये माल की फरा है, लिहाजा दोनों शरीकों के माल की जिंस का मुत्तहिद होना शर्त है, ताकि दोनों माल मिलेंगे तो जब माल के अंदर दोनों की शिरकत आएगी तो नफे के अंदर भी शिरकत आएगी। और अगर दोनों के माल की जिंस अलग अलग है, यानी एक का माल दिरहम है दूसरे का माल दीनार है, तो फिर तो माल मिले ही नहीं, मिला भी दिए जाएं फिर भी दिरहम और दीनार की पहचान हो रही है, लिहाजा इस सूरत में शिरकत ही सही नहीं। तो कहते हैं हत्ता युअतबरु इत्तिहादुल जिंसी, यहां तक कि दोनों के माल की जिंस का मुत्तहिद होना मोतबर है, वयुश्तरतुल खल्तु, और मिलाना शर्त होगा। ये दूसरी तफरी आ गई, जब नफा माल की फरा है तो दोनों के मालों की जिंस भी एक होनी चाहिए और मिलाना भी शर्त होगा। तो कहते हैं वयुश्तरतुल खल्तु, और दोनों मालों का मिलाना भी शर्त होगा। वला यजूजु तफाजुलु फिर रिबह मा तसावी फिल माल, ये तीसरी तफरी आ गई कि जब नफा वो माल की फरा है तो जब माल बराबर हो तो नफा भी दोनों में बराबर तकसीम होगा, माल बराबर हो और नफे के अंदर कमी बेशी तय कर लें यह जायज नहीं होगा। तो कहते हैं वला यजूज तफाजुल फिर रिबह, और नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं होगी, मा तसावी फिल माली, माले शिरकत में बराबरी के होते हुए, वला यजूज शिरकत तकबुली वल अमाली लिन इदामिल माल, ये चौथी तफरिया कर रहे हैं इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के जाब्ते पर। उनके नजदीक जो नफा है ये फरा है माल की, यानी असल सरमाए की, तो उनके नजदीक शिरकत तकबुल और शिरकत अमाल जायज ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर माल ही नहीं होता। जब माल नहीं है तो शिरकत भी जायज नहीं, क्योंकि शिरकत की बुनियाद माल पर है जो दोनों शरीकों ने आपस में मिलाया हो। भाई याद रखो, ये शिरकत अमाल और शिरकत तकबुल ये आगे बयान करेंगे साहिब हिदाया। जहां शिरकत का बाब शुरू हुआ था साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि शिरकत चार किस्म पर है, एक शिरकत मुफावजा है, एक शिरकत इनान है, एक शिरकत सनाया है और एक शिरकत वजूह है। भाई तो ये जो शिरकत सनाया है इसको शिरकत अमाल भी कहते हैं, इसको शिरकत तकबुल भी कहते हैं। तो शिरकत तकबुल ये है कि दो कारीगर या दो पेशे वाले अफराद जो हैं वो आपस में शिरकत कर लेते हैं, मसलन जैद भी दर्जी है और अमर भी दर्जी है, और ये दोनों आपस में अकदे शिरकत कर लेते हैं कि जो भी कोई काम लेकर आएगा कपड़े सीने वाला, चाहे मेरे पास लाए चाहे तुम्हारे पास लाए, हम उसको कबूल करेंगे और फिर हम दोनों मिलकर वो काम करेंगे, आधा काम तुम करोगे आधा काम मैं करूंगा, और फिर उसके बाद जो नफा हासिल होगा वो हम दोनों आपस में तकसीम करेंगे। तो देखो, दो पेशे वालों ने या दो कारीगरों ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया। ये आगे तफसील आ जाएगी, साहिब हिदाया खूब वजाहत फरमाएंगे। भाई तो बात यहां यह चल रही है, इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नजदीक ये जो नफा होता है ये असल माल की फरा होता है, लिहाजा असल माल में शिरकत है तो फरा यानी नफे में भी शिरकत है। तो चुनाचे इसी पर तफरिया करते हुए वो फरमाते हैं कि शिरकत तकबुल और शिरकत अमाल जायज नहीं। शिरकत तकबुल और शिरकत अमाल ये उसी शिरकत सनाया का नाम है, वो जो दो कारीगर या दो पेशे वाले आपस में शिरकत कर लेते हैं उसको शिरकत सनाया भी कहते हैं, इसी तरह उसको शिरकत अमाल भी कहते हैं कि अमल में दोनों शिरकत कर रहे हैं, इसी तरह इसको शिरकत तकबुल भी कहते हैं कि दोनों काम को कबूल करते हैं। भाई जिसके पास भी कोई काम ले आए तो वो उसको कबूल कर सकता है और वो दोनों को करना पड़ेगा। तो इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नफा जो है वो माल की फरा होता है, तो लिहाजा शिरकत तकबुल और अमाल जायज नहीं, क्योंकि शिरकत तकबुल और अमाल के अंदर माल ही नहीं होता, वहां तो शिरकत अमल पर की है कि जो भी कोई काम लेकर आएगा हम वो काम करेंगे, यानी जो भी कपड़े लाएगा हम वो दोनों मिलकर सियेंगे। तवज्जो है, तो वहां सरमाया और माल है ही नहीं, जब सरमाया और माल है ही नहीं तो वहां नफे के अंदर भी शिरकत जायज नहीं होगी। ये माना है वला यजूज शिरकत तकबुली वल अमाली, और शिरकत तकबुल और शिरकत अमाल भी जायज नहीं है, लेन इदामिल माली, माल के मादूम होने की वजह से कि इसमें माल ही नहीं है तो शिरकत भी नहीं हो सकती। वलाना, अब हमारी दलील आ गई कि अन्ना शिरकत फिर रिब्ह मुस्तनिदतुन इलल अक्दी दून अल माल। हम कहते हैं कि ये जो नफे के अंदर शिरकत है इसकी निस्बत उस अकद की तरफ की जा रही है, वो जो दोनों ने आपस में अकदे शिरकत किया था, दोनों ने आपस में अकदे शिरकत किया था, दोनों ने कहा था भाई जैद ने भी 5 लाख मिलाए, अमर ने भी 5 लाख मिलाए, और दोनों ने अकद कर लिया कि हम दोनों कपड़े की तिजारत करेंगे और जो भी नफा आएगा उसमें हम दोनों शरीक होंगे। तो हमारे नजदीक ये जो नफे के अंदर शिरकत है इसकी निस्बत माल की तरफ नहीं की जाएगी, सरमाए की तरफ इसकी निस्बत नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी निस्बत अकद की तरफ की जाएगी कि दोनों शरीकों ने आपस में अकद किया है, दोनों एक दूसरे के वकील बन गए हैं। जब दोनों एक दूसरे के वकील हैं तो दोनों में से हर एक जो भी बैउ शिरा करेगा तो हर अकद के अंदर वो असील भी है, वो अकद अपने लिए भी कर रहा है और अपने शरीक का वकील भी है, तो निस्फे अकद उसकी तरफ से भी कर रहा है। तो हर अकद के अंदर हर शरीक असील भी है और दूसरे का वकील भी है, और जब वकील है दूसरे की तरफ से तो दूसरे पर समन के अंदर रुजू भी करेगा। मसलन जैद शिरकत के लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है तो वो निस्फ माल के अंदर अमर पर रुजू करेगा कि मैं इस आकद के निसफ में तुम्हारी तरफ से वकील था, लिहाजा अब निसफ समन तुम्हें देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो हमारे नजदीक ये जो नफे के अंदर शिरकत आती है इसकी निस्बत माल की तरफ नहीं करेंगे, बल्कि इसकी निस्बत उस आकद की तरफ करेंगे जो दोनों ने आपस में किया है और उस आकद की वजह से दोनों एक दूसरे के वकील हैं। भाई वलाना, और हमारी दलील यह है अन्न शिरकत फिर रिब्ह, कि नफे के अंदर जो शिरकत है मुस्तनिदतुन इलल अक्दी, उसकी निस्बत हो रही है अकद की तरफ, दून अल माली, ना के माल की तरफ। ये जो नफे के अंदर शिरकत है इसकी निस्बत माल की तरफ नहीं हो रही बल्कि किसकी तरफ हो रही है, अकद की तरफ हो रही है। और दोनों ने अकद किया है या नहीं, जब अकद किया है बेशक माल मिलाया हो या ना मिलाया हो, अकद तो मौजूद है, जब अकद मौजूद है तो नफे के अंदर शिरकत आएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के वकील भी हैं। भाई और याद रखना यहां जो इबारत आई वलना अन्न शिरकत फिर रिब्ह मुस्तनिदतुन इलल अक्दी, बाद शारहीन ने लिखा है कि यह इसमें मफूल का सीगा है मुस्तनदतुन। भाई बाज ने इसको इसमें मफूल का सीगा करार दिया है और बाजों ने इसको इसमें फाइल करार दिया है मुस्तनिदतुन। भाई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मसलन हम इसको मुस्तनिदतुन पढ़ते हैं इसमें फाइल, तो तर्जमा कैसे होगा कि अन्न शिरकत फिर रिब्ह मुस्तनिदतुन इलल अक्दी, कि ये नफे के अंदर जो शिरकत है उसकी निस्बत हो रही है अकद की तरफ, उसकी निस्बत हो रही है अकद की तरफ। और अगर आप इसको इसमें मफूल पढ़ें अन्न शिरकत फिर रिब्ह मुस्तनदतुन इलल अक्दी, कि नफे के अंदर जो शिरकत है मुस्तनदतुन इलल अक्दी, उसकी निस्बत की गई है अकद की तरफ। इसमें फाइल पढ़ें तो निस्बत हो रही है और इसमें मफूल पढ़ें तो निस्बत की गई है अकद की तरफ, तो इससे कोई खराबी नहीं आती। भाई तो वलाना हमारी दलील यह है कि अन्न शिरकत फिर रिब्ह, कि नफे के अंदर जो शिरकत है मुस्तनिदतुन इलल अक्दी, उसकी निस्बत अकद की तरफ हो रही है, दून अल माली, न के माल की तरफ, लिअन्न अल अक्द युसम्मा शिरकतन, इसलिए क्योंकि ये अकद जो है ये शिरकत कहलाता है। इमाम शाफी और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते थे कि जो माल मिलाया है ये माल शिरकत है, इसीलिए इस अकद को अकद शिरकत कहते हैं क्योंकि इस अकद की निस्बत इस माल शिरकत की तरफ हो रही है, तो इस माल शिरकत की वजह से अकद को क्या कहते हैं, अकद शिरकत। हम कहते हैं नहीं, इस माल की वजह से इस अकद को शिरकत नहीं कहते बल्कि इस अकद का खुद नाम ही शिरकत है। इस माल की वजह से अकद को शिरकत नहीं कहते बल्कि यह अकद खुद ही शिरकत कहलाता है। यह माना है लिअन्न अल अक्द युसम्मा शिरकतन, इसलिए क्योंकि यह अकद जो है यह शिरकत कहलाता है। फला बुद्ध मिन तहक्कुकी माना हादल इस्मी फीही, फला बुद्ध तो जरूरी है मिन तहक्कुकी माना हादल इस्मी, इस इसम के माना का पाया जाना फीही इस अकद में। हम कहते हैं ये जो अकद इन्होंने आपस में किया है ये ही अकद शिरकत कहलाता है। जब ये अकद ही शिरकत है तो इस अकद में शिरकत वाला माना होना चाहिए, और इस अकद में शिरकत वाला माना है, दोनों एक दूसरे के वकील हैं भाई। तो कहते हैं फला बुद्ध मिन तहक्कुकि माना हाद अल इस्म फीही, तो लिहाजा जरूरी है कि इस इसम का माना, कौन सा इसम, शिरकत, इस अकद का क्या नाम है, शिरकत, तो शिरकत वाला माना इस अकद में पाया जाना चाहिए भाई। तो कहते हैं फला बुद्ध मिन तहक्कुकि माना हाद अल इस्म, लिहाजा शिरकत के इसम का माना का पाया जाना जरूरी है, फीही इस अकद के अंदर, फलम यकुनिल खल्तु शर्तन, लिहाजा दोनों मालों को मिलाना शर्त नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस अकद का नाम ही शिरकत है, जब इस अकद का नाम शिरकत है इसकी वजह से इसको अकद शिरकत कहा जाता है, तो माल का मिलाना शर्त नहीं, क्योंकि माल को मिलाने की वजह से इसको अकद शिरकत नहीं कहा जाता, तो जब माल के मिलाने की वजह से इसको शिरकत नहीं कहा जाता तो माल का मिलाना भी शर्त नहीं होगा। माल का मिलाना तब शर्त होता अगर माल के मिलाने की वजह से इसको अक्द शिरकत कहा जाता, लेकिन हमने बता दिया माल को मिलाने की वजह से इसको शिरकत नहीं कहा जाता, इस अकद का नाम ही शिरकत है, और इस अकद के अंदर शिरकत होती है कि दोनों में से जो भी तिजारत वाला कोई तसारुफ करता है दूसरा उसके साथ शरीक होता है भाई। तो कहते हैं फलम यकुनिल खल्तु शर्तन, लिहाजा मिलाना जो है वो शर्त नहीं होगा, वली अन्न दराहिम वदना नीरा, यहां से दूसरी दलील दे रहे हैं, पहली दलील अहनाफ की गुजर गई, क्या दलील थी कि नफे के अंदर जो शिरकत आई है उसकी निस्बत अकद की तरफ है माल की तरफ नहीं, इस अकद को शिरकत कहा जाता है और इस अकद के अंदर शिरकत वाला माना पाया जाता है भाई। और बाकी दूसरी दलील दे रहे हैं कि दिरहम और दीनार ये तो हमने आपको बता दिया ये तायीन से मुतायन नहीं होते, लिहाजा दोनों तिजारत कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि तिजारत करने वाला इस माले शिरकत ही को बतौर समन के अदा करे, वो अपनी तरफ से भी माल अदा कर सकता है, क्योंकि दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते। हां अपने माल से जब वो अदा करेगा तो फिर इसी माले शिरकत पर रुजू करेगा या अपने साथी पर रुजू करेगा भाई। तो कहते हैं वली अन्न दराहिम वदनानी रलायतायनानी, और इसलिए क्योंकि दिरहम और दीनार जो हैं वो मुतायन नहीं होते, वो मुतायन नहीं होते, हत्ता के समन के तौर पर वही माल शिरकत देना जरूरी नहीं बल्कि उसकी जगह और माल भी दिया जा सकता है। तो कहते हैं वली अन्न दराहिम वदनानी रलायतायनानी, और इसलिए क्योंकि दिरहम और दीनार जो है वो मुतायन नहीं होते, फला युस्तफादुर रिबह बिरअसिल माली, तो नफा जो है वो रासुल माल से हासिल नहीं होता, फला युस्तफादुर रिबह, लिहाजा नफा हासिल नहीं किया जाता बिरअसिल माली रासुल माल के जरिए। इमाम शाफी और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब कोई चीज दोनों खरीदेंगे तो समन जो अदा करेंगे वो माले शिरकत से अदा करेंगे, जब माले शिरकत से समन अदा किए हैं तो फिर उस चीज के अंदर जो नफा आएगा तो नफे के अंदर भी दोनों की शिरकत होगी। हम कहते हैं नहीं, यहां पर दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन होते ही नहीं, तो लिहाजा यह नहीं कहा जाएगा कि यह नफा इसी रासुल माल की वजह से आया है, क्योंकि बतौर समन के यही रासुल माल अदा करना जरूरी नहीं, आप और दिरहम और दीनार भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, लिहाजा बतौर समन के रासुल माल ही को देना यह मुतायन नहीं है, आप अपना माल भी दे सकते हैं लेकिन फिर आप अपने शरीक पर रुजू कर लेंगे जितना आपने अपना माल लगाया भाई। तो कहते हैं फला युस्तफादुर रिबह बिरअसिल माली, लिहाजा नफा हासिल नहीं होता बिरअसिल माली ऐन रासुल माल के जरिए, नफा जो हासिल होता है वो ऐन रासुल माल के जरिए हासिल नहीं होता। तो कहते हैं फला युस्तफादुर रिबह बिरअसिल माली, तो नफा जो है वो ऐन रासुल माल के जरिए हासिल नहीं होता, वह इन नमा युस्तफादु बित्तसर्रुफी, और नफा जो हासिल होता है वो तसर्रुफ की वजह से हासिल होता है, और तसर्रुफ जो कर रहे हैं दोनों उसका तो आपस में अकद कर चुके हैं, उसमें दोनों एक दूसरे के वकील भी हैं, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन नमा युस्तफादु बित्तसर्रुफी, और नफा जो हासिल होता है वो तसर्रुफ की वजह से हासिल होता है, लिअन्नहु फिन्निस्फि असीलुन, इसलिए क्योंकि तसर्रुफ के अंदर जो है हर एक शरीक निसफ के अंदर असील होता है, दोनों शरीकों में से जो भी बेउशिरा करेगा तो उस बेउशिरा में वो अकद करने वाले का भी हिस्सा है और अपने शरीक की तरफ से भी कर रहा है, तो निसफ के अंदर है वो असील अपने लिए अकद कर रहा है और निसफ अकद कर रहा है वो अपने शरीक के लिए, क्योंकि ये उसकी तरफ से वकील है। भाई बात समझ में आ गई। तो ये जो तसर्रुफ में शिरकत आई है वो उस अकद की वजह से आई है। तो जब तसर्रुफ के अंदर शिरकत आ गई तो फिर नफे के अंदर भी शिरकत आएगी। तो कहते हैं लिया नहु फिन निस्फ असील, इसलिए क्योंकि तसरुफ के निसफ के अंदर वो असील है, वह फिन निस्फ वकील और निसफ के अंदर वो वकील है। वह इदा तहक्कत शिरकत फी तसरुफी, और जब शिरकत पाई गई फिर तसरुफी तसरुफ में बिदून इल खलती बगैर माल को मिलाए हुए ही, तहक्कत फिल मुस्तफादी भी ही, तो शिरकत पाई गई मुस्तफाद भी ही के अंदर भी, वह हुआ रिब्ह और मुस्तफाद भी ही क्या है वो नफा है, बिदूनी ही आई बिदूनिल खलती बगैर माल के मिलाए। तवज्जो है, अहनाफ की दलील चल रही है, हमारे नजदीक दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते, लिहाजा जो नफा हासिल होगा वो इस रासुल माल की वजह से हासिल नहीं हुआ बल्कि नफा तसर्रुफ की वजह से हासिल हुआ है। और दोनों में से हर एक तसर्रुफ के अंदर असील भी है और वकील भी है। तो जब तसर्रुफ के अंदर शिरकत पाई जा रही है, दोनों में से जो शख्स भी शिरकत के लिए तिजारत की नीयत से जो भी तसर्रुफ करता है उस तसर्रुफ में शिरकत है। जब तसर्रुफ के अंदर शिरकत है तो नफे के अंदर भी शिरकत आ जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह इदा तहक्कत शिरकत फी तसर्रुफी, और जब तसर्रुफ में शिरकत पाई गई बिदून इल खलती माल को मिलाए बगैर ही, तो तहक्कत फिल मुस्तफादी भी ही, तो मुस्तफाद भी ही के अंदर भी शिरकत पाई गई, वह हुआ रिब्ह और मुस्तफाद भी ही वो नफा है। अभी दोनों ने आपस में माल मिलाया भी नहीं, जैद और अमर दोनों ने आपस में आपसे शिरकत कर लिया, जैद ने कहा 5 लाख मेरी तरफ से होंगे 5 लाख आपकी तरफ से होंगे, हम दोनों मिलकर तिजारत करते हैं, अभी माल मिलाया नहीं, दोनों ने पहले से ही तिजारत शुरू कर दी। तो जब आकद कर चुके हैं तो हर तिजारत के अंदर दोनों एक दूसरे के वकील भी हैं। तो जब तसर्रुफ के अंदर शिरकत है, हालांकि अभी माल मिलाया नहीं, तो जब तसर्रुफ के अंदर शिरकत है तो जो नफा हासिल होगा उसके अंदर भी शिरकत होगी। ये माना है वह इदा तहक्कती शिरकत फी तसर्रुफी बिदून इल खलती, और जब बगैर मिलाए ही तसर्रुफ के अंदर शिरकत पाई गई तो तहक्कत फिल मुस्तफादी भी ही, तो मुस्तफाद भी ही के अंदर भी शिरकत पाई गई, वह हुआ रिब्ह और मुस्तफाद भी ही जो है वो नफा है, यानी उसके अंदर भी शिरकत आ गई, बिदूनी ही आई बिदून इल खलती माल को मिलाए बगैर ही भाई। वसार अकल मुजारबती, और ये अक्द शिरकत भी मुजारबत की तरह हो गया। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमोमल्ला तो फरमाते थे कि मुजारबत तो शिरकत है ही नहीं, उन पर एतराज होता था कि आपने कहा ये जो नफा है ये माल की फरा है, तो फिर मुजारबत के अंदर तो माल एक का होता है लिहाजा सारा नफा उसी को मिलना चाहिए। तो जवाब उन्होंने दिया था कि मुजारबत शिरकत है ही नहीं, मुजारबत में तो मुजारिब को जो नफा मिलता है वो उसके अमल की वजह से मिलता है। और अब हमारी दलील चल रही है तो हम कहते हैं कि जब माल को मिलाए बगैर ही तसर्रुफ के अंदर दोनों की शिरकत पाई गई तो नफे के अंदर भी दोनों की शिरकत होगी। तो ये शिरकत भी मुजारबत की तरह हो गई, जैसे मुजारबत के अंदर माल एक का होता है तो वहां माल का मिलाना नहीं पाया गया, माल का मिलाना वहां नहीं है फिर भी नफे के अंदर दोनों की शिरकत होती है। तो यहां पर भी शिरकत के अंदर भी माल अभी बेशक ना मिलाया हो फिर भी नफे के अंदर दोनों की शिरकत होगी भाई। तो कहते हैं वसार अकल मुजारबती, और ये आकदे शिरकत जो है ये भी मुजारबत की तरह हो गया। फला युश्तरतु इत्तेहादुल जिंसी, लिहाजा इत्तेहाद जिंस भी शर्त नहीं होगा। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक बड़ा जाबता यह है कि जो नफा है यह माल की फरा है, और फिर इस पर 4 तफरीआत की थी। एक तफरीआ ये की थी कि दोनों के सरमाया एक जिंस का होना चाहिए, यह भी शर्त है क्योंकि मिलाना है, इस तरह मिलाना है कि पहचान ना हो सके, तो उसके लिए इत्तेहादे जिंस भी शर्त होगा और दोनों मालों का मिलाना भी शर्त होगा, और नफे के अंदर कमी बेशी भी जायज नहीं होगी, जितना जिसका माल है उतना ही उसका नफे में हिस्सा होगा। और नीज वो फरमाते थे शिरकत तकबुल और अमाल भी जायज नहीं क्योंकि वहां पर माल ही नहीं है, और यह नफा तो माल की फरा होता है। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि हमने साबित कर दिया कि नफे के अंदर जो शिरकत आती है वो इसलिए कि दोनों की तसरुफ में शिरकत है। अगरचे दोनों ने अभी अपना माल मिलाया ही ना हो, फिर भी तसरुफ के अंदर शिरकत और नफे के अंदर शिरकत हो जाती है भाई। लिहाजा दोनों के माल का एक जिंस का होना भी नहीं जरूरी और नीज दोनों मालों का मिलाना भी नहीं जरूरी भाई, और नीज नफे के अंदर बराबरी भी जरूरी नहीं, क्योंकि जो नफा है इसकी निस्बत माल की तरफ नहीं की जाती बल्कि इसकी निस्बत आकद और तसरुफ की तरफ की जाती है। तो कहते हैं फला युश्तरत उत्तेहादुल जिंसी, तो लिहाजा जिंस का मुत्तहिद होना शर्त नहीं होगा हमारे नजदीक, क्योंकि हमारे नजदीक दोनों मालों का मिलाना शर्त नहीं है। और नीज व तसावी फिर रिब ही आई फला युश्तरत उत्तसावी फिर रिब ही, और नीज इसी तरह हमारे नजदीक नफे के अंदर बराबरी भी शर्त नहीं होगी, क्योंकि नफा माल की फरा नहीं है बल्कि नफे की निस्बत अकद की तरफ की जाती है, तो लिहाजा नफे में भी बराबरी शर्त नहीं होगी। वह तस्सिहु शिरकतु तकबुली, और नीस हमारे नजदीक जो है शिरकत तकबुल भी सही है, क्योंकि यह नफा माल की फरा नहीं है, तो वहां अगरचे माल नहीं है तो फिर भी शिरकत तकबुल सही है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यजूजु शिरकतु इदा शुरिता लि अहदिहिमा दराहिमु मुसम्मातुम मिनर रिबही। साहिब हिदायत आपको बतला रहे हैं कि दो आदमियों ने आपस में अक़्द शिरकत किया, मसलन जैद जो है वो तिजारत ज्यादा जानता है, वो तिजारत का माहिर है, तो जाहिर सी बात है वो अपने लिए ज्यादा नफे का मुतालबा करेगा। माल दोनों का बराबर है, जैद ने भी 5 लाख मिलाए, अमर ने भी 5 लाख मिलाए, लेकिन जैद कहता है मैं 70% नफा लूंगा और अमर को मैं 30% नफा दूंगा। हमने बताया कि हमारे नजदीक की अक़्द शिरकत सही है भाई, माल बराबर हो और नफे में कमी बेशी हो यह जायज है, लेकिन दोनों में से एक के लिए अगर कुछ मुअय्यन दिरहम तय कर दिए फिर जायज नहीं। मसलन जैद ये नहीं कहता कि मैं 70% नफा लूंगा, बल्कि जैद यूं कहता है कि हम दोनों तिजारत करेंगे, जो भी नफा आया करेगा तो पहले 20 दिरहम मेरे हुआ करेंगे और बाकी जो नफा होगा वो हम आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। तो जैद ने अपने लिए मुअय्यन दिरहम मुकर्रर कर दिए, क्योंकि जैद तिजारत का ज्यादा माहिर है तो वो ज्यादा नफा लेना चाहता है, लेकिन कहते हैं ये तरीका जायज नहीं है। वजह यह कि हो सकता है नफा ही सारा 20 दिरहम हो, जब नफा ही सारा 20 दिरहम है वो तो सारा जैद ले जाएगा, हालांकि इस अक़्द शिरकत का मकसद क्या था कि नफे में दोनों की शिरकत होनी चाहिए, लिहाजा ये ऐसी शर्त लगा दी है जो शिरकत को खत्म कर रही है, लिहाजा ये शर्त सही नहीं है भाई। तो कहते हैं काल वला यजूजु शिरकतु इदा शुरिता लि अहदिहिमा दराहिमु मुसम्मातुम मिनर रिबही। काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यजूजु शिरकतु, और शिरकत जायज नहीं है, इदा शुरिता लि अहदिहिमा, जब शर्त लगा दी जाए दोनों शरीकों में से एक के लिए, दराहिमु मुसम्मातुम मिनर रिबही, नफे में से मुअय्यन दिरहमों की, जब दोनों शरीकों में से एक के लिए नफे में से मुअय्यन दिरहमों की शर्त लगा दी जाए तो यह शिरकत जायज नहीं भाई। याद रखो ये दराहिमो ये मरफू है, अलबत्ता ये गैर मुनसरिफ है, इस पर तनवीन नहीं आएगी, और ये मरफू है क्योंकि ये शुरिता के लिए नाइब फाइल है, और मुसम्मातुन ये इसकी सिफत है, तो मौसूफ मरफू तो सिफत भी मरफू, अलबत्ता मुसम्मातुन पर तनवीन आएगी क्योंकि यह मुनसरिफ है भाई, तो मौसूफ तो गैर मुनसरिफ है उस पर तनवीन नहीं, लेकिन सिफत तो मुनसरिफ है उस पर तनवीन आएगी। और नीज दराहिम जमा है, और जमा बतावीले जमातुन के वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, इसीलिए इसकी जमा मुसम्मातुन वाहिद मुअन्नस लाई गई भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यजूजु शिरकतु, और शिरकत जायज नहीं है, इदा शुरिता लि अहदिहिमा दराहिमु मुसम्मातुम मिनर रिबही, जब दोनों शरीकों में से एक के लिए नफे में से मुअय्यन दिरहमों की शर्त लगा दी जाए, लिअन्नहु शर्तुन युजिबुन क़िता शिरकति, इसलिए क्योंकि यह ऐसी शर्त है जो शिरकत के इनक़िता को साबित करती है, इसकी वजह से तो शिरकत खत्म हो जाती है भाई। कहते हैं अन्नहु शर्तुन, इसलिए क्योंकि ये ऐसी शर्त है, यूजिबु अयुस भी तू, कि यह साबित करती है इनकता शिरकत, शिरकत के मुनकते हो जाने को। फासाहुला यखरुजु इल्ला कदरुल मुसम्मा लिअहदिहिमा, इसलिए क्योंकि शायद न निकले इल्ला कदरुल मुसम्मा, मगर वो जो जिक्र किया गया है लिअहदिहिमा, दोनों में से एक के लिए, क्योंकि हो सकता है जो नफा निकले वो जो जिक्र किया गया है उतना ही नफा हासिल हो, तो वो तो सारा एक ले जाएगा, दूसरे का तो नफे में हिस्सा न रहेगा, तो नफे में तो शिरकत खत्म हो गई भाई। तो कहते हैं फासाहु ला यखरुजु, इसलिए क्योंकि शायद न निकले इल्ला कदरुल मुसम्मा लिअहदिहिमा, मगर वो जो जिक्र किया गया है दोनों में से एक के लिए। व नजीरुहु फिल मुजारअती, और इसकी नजीर जो है मुजारअत में है। मुजारअत भाई अक्ल मुजारअत कर लेते हैं दो आदमी मिलकर, कि हम दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे और जो नफा हासिल होगा, जो पैदावार हासिल होगी, वह हम आपस में निसफ निसफ मसलन तकसीम करेंगे। तो मुजारअत के अंदर भी याद रखो, अगर दोनों में से एक ने अपने लिए मुअय्यन मिकदार पहले से तय कर ली कि जितनी पैदावार हासिल होगी, पहले 20 मन जो हैं वो मेरे होंगे और बाकी पैदावार के अंदर हम दोनों शरीक होंगे, तो याद रखो इस सूरत में भी ये अक्द मुजारअत जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई आफत आ जाए, बारिश वगैरह ज्यादा हो जाए, तो सारी फसल ही मसलन 20 मन हासिल हुई, तो ये सारी फसल तो एक शरीक ले जाएगा, दूसरे के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये ऐसी शर्त है जो शिरकत को खत्म कर रही है, तो ऐसी शर्त शिरकत में या मुजारअत में लगाना सही नहीं। तो कहते हैं व नजीरुहु फिल मुजारअती, और इसकी नजीर जो है मुजारअत में है। काला वली कुल वाहिद मिनल मुफाविज़ैनि व शरीकैल ऐनानि अन युबज़िअल माल, यहां से साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि दो आदमियों ने आपस में अकदे शिरकत कर लिया, अब दोनों तिजारत करेंगे, लेकिन किस किस तसर्रुफ की दोनों को इजाजत होगी, इस शिरकत के अंदर किस किस तसर्रुफ की दोनों को इजाजत होगी, तो आपको बताएंगे ये दोनों आगे किसी को वकील बना सकते हैं, ये दोनों आगे किसी को वकील बना सकते हैं कि मेरे लिए फलां चीज खरीद कर ले आओ, क्योंकि तिजारत में वकील बनाने की जरूरत पेश आती है, हर चीज आदमी खुद नहीं खरीद सकता, बाज़ औकात किसी और को भेज देता है कि जाओ फलां चीज खरीद कर ले आओ, तो लिहाजा दोनों को वकील बनाने की इजाजत होगी। इसी तरह याद रखो शिरकत के अंदर तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत के अंदर बाज़ औकात किसी को मुलाजिम रखना पड़ता है कि वो भी तिजारत के कामों में उनकी मदद करे, तो वो मुलाजिम भी रख सकते हैं तिजारत के सिलसिले में। और फिर इसी तरह ये भी याद रखो, ये अपना माल किसी को बतौर बिजाअत की भी दे सकते हैं, मैंने आपको बतलाया था बिजाअत इसे कहते हैं कि एक शख्स ताजिर को अपना सरमाया देता है कि मेरा माल भी अपने तिजारत के अंदर लगा दो और मेरे माल से जितना नफा है वो मुझे दे देना। मसलन जैद का कारोबार बेहतरीन चल रहा है और अमर ने उसको कुछ माल दे दिया कि तुम्हारा अपना तो बेहतरीन गुजारा हो रहा है, यूं करो अपने कारोबार में मेरा भी यह माल लगा दो और मेरे माल से जो नफा आए वो सारा मुझे दे देना। तो जैद भी नेक आदमी है, तबलीगी आदमी है, वो कबूल कर लेता है कि भाई इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं, मेरा तो काम सही चल रहा है, लाओ अपना सरमाया दे दो, तुम्हारे माल का जितना नफा होगा वो मैं हिसाब करके तुम्हें पूरा पूरा नफा दे दिया करूंगा, तो इसको बिजाअत कहते हैं। तो देखो बिजाअत के अंदर किसी को अपना माल बतौर सरमाए के दिया जाता है और उस सारे माल का नफा वो माल वाला ही लेता है, दूसरा आदमी उसमें अपना हिस्सा नहीं लेता। तो याद रखो दो आदमी जब आपस में अकदे शिरकत कर लें तो वो बिजाअत के तौर पर भी माल किसी को दे सकते हैं। बिजाअत का माना सरमाया और पूंजी भाई। तो दो शरीक जब आपस में अकदे शिरकत कर लें वो आगे किसी को अपना ब्याव शिरा में वकील भी बना सकते हैं, वो तिजारत के अंदर मदद के लिए कोई मुलाजिम भी रख सकते हैं, और नहीं इसी तरह वो दोनों शरीक जो हैं बिजाअत के तौर पर भी किसी को अपना माल दे सकते हैं। इसी तरह दोनों अपने से कोई एक जो है अपना माल किसी को मुजारबत के तौर पर देता है कि माल मेरा होगा, मेहनत तुम करना और नफा हम दोनों आपस में तकसीम करेंगे, तो दोनों शरीकों को इजाजत होगी वह अपना माल मुजारबत के तौर पर भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन दोनों शरीक अपना माल शिरकत के लिए किसी को नहीं दे सकते। दोनों ने 5-5 लाख मिलाए हैं और दोनों तिजारत कर रहे हैं और अमर इसमें से 2 लाख किसी और को देता है और उसके साथ अकदे शिरकत कर लेता है, कि तुम भी 2 लाख मिलाओ, मैं भी 2 लाख मिलाता हूं, वो नफा आएगा, वो नफा हम दोनों में तकसीम हो जाएगा। और फिर जैद कहता है जो नफा मिलेगा मैं फिर उसको अपने शरीक यानी अमर के साथ तकसीम कर लूंगा। नहीं भाई, याद रखो, ज़ाबता याद रखना, कोई चीज भी, कोई चीज जो है अपने से अदना चीज को तो अपना ताबे बना सकती है, लेकिन अपने बराबर वाली या अपने से बढ़कर जो चीज है उसको अपना ताबे नहीं बना सकती। तवज्जो है। लिहाजा दोनों ने आपस में आकदे शिरकत किया है और दोनों में से एक जो है इसी माले शिरकत के जरिए किसी और से आकदे शिरकत करना चाहता है कि वहां से जो नफा आएगा वो भी हम दोनों शरीक फिर आपस में तकसीम कर लेंगे। सूरत भी समझ में आ रही है या नहीं? जैद और अमर ने आकदे शिरकत कर लिया, मसलन जैद ने भी 10 लाख मिलाए, अमर ने भी 10 लाख मिलाए। अब जैद इसमें से 5 लाख लेकर खालिद के साथ शिरकत करता है इसी माले मुश्तरका में से लेकर, और जैद का इरादा क्या है कि मैं खालिद के साथ शिरकत करूंगा, खालिद से जो नफा आएगा वो मेरे और खालिद में तकसीम होगा, तो मेरे हिस्से में जो नफा आएगा वो मैं और अमर फिर आपस में तकसीम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? कहते हैं नहीं, ये जायज नहीं है, क्योंकि जैद और अमर ने आकदे शिरकत किया है तो दोनों को शिरकत से कम दर्जे के जो तसर्रुफात हैं उनकी तो इजाजत होगी, शिरकत के बराबर के या शिरकत से ऊपर के जो तसर्रुफात हैं उनकी इजाजत नहीं होगी। तो ज़ाब्ता क्या हुआ? कोई चीज अपने से कम दर्जे की चीज को तो अपना ताबिया बना सकती है, लेकिन अपने से बराबर या अपने से ऊपर की किसी चीज को अपना ताबिया नहीं बना सकती। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولکل واحد من المفاوضین اور عقد مفاوضہ کرنے والوں میں سے ہر ایک جو ہے وشریک یلعنان اصل میں تھا شریکین پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی توجہ ہے ادھر دیکھیے دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے چاہے انہوں نے عقد مفاوضہ کیا ہے چاہے شرکت عینان کی ہے دونوں کو इजाजत है वो बतौर बिजात के किसी को माल दे सकते हैं। तो कहते हैं काल साहिब कदूरी फरमाते हैं वलिकुल वाहिदिन मिनल मुफावजैनी और अक्त मुफावजा करने वालों में से हर एक को व शरीक ईनानी और इसी तरह शिरकत ईनान करने वाले दोनों शरीकों में से हर एक के लिए यह जायज है अयुबी अल माला कि वो माल को बिजात के तौर पर दे दे, ये जो माल शिरकत है इसको बतौर बिजात के दे दे लिअन्नहु मुअतादुन फी अक्दि शिरकती इसलिए क्योंकि अकदे शिरकत में मुअताद है, ताजिरों में आदत जारी है भाई। जैद ने और अमर ने अकदे शिरकत किया है, 10-10 लाख दोनों ने मिलाए हैं, अब दोनों तिजारत करेंगे और नफा कमाएंगे तो बिजात के जरिए भी तो नफा ही हासिल होता है, लिहाजा ताजिर बिजात को भी इख्तियार करते रहते हैं, लिहाजा दोनों को इसकी इजाजत होगी भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु मुअतादुन फी अक्दि शिरकती इसलिए क्योंकि बिजात जो है ये अक्दे शिरकत के अंदर मुअताद है, यानी इसकी आदत जारी है ताजिरों के अंदर, ताजिरों में आदतन ऐसा होता रहता है भाई, तिजारत के अंदर ताजिर इस तरह करते रहते हैं, लिहाजा ये तिजारत की चीजों में से है तो दोनों को इसकी इजाजत होगी। और नीस इस वजह से भी दोनों को इजाजत होगी कि दोनों के लिए जायज है कि वो किसी आदमी को मुलाजिम रख लें कि वो तिजारत के काम में इनकी मदद करे, तो जब किसी आदमी को ये मुलाजिम रखेंगे तो उसको उजरत देना पड़ेगी, मालूम हुआ वो जो मुलाजिम है वो इनके लिए अमल कर रहा है इवज के बदले में, और जब आप बिजात के तौर पर किसी को माल देते हैं तो वो जो ताजिर है वो आपके लिए बगैर इवज के अमल करता है, तवज्जो है। तो जब दोनों शरीक किसी को मुलाजिम रख सकते हैं कि वो इवज के बदले इनके लिए काम करे तो बतौर बिजात के वो बतरीके औला किसी को माल दे सकते हैं कि वहां बगैर इवज के ही वो आदमी इनके लिए काम करता है भाई। बात समझ में आ गई? कहते हैं वली अन लहू और इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक के लिए जायज है अस्ताजीरा कि वो किसी मुलाजिम को उजरत पर रखे अलल अमली अमल पर। तो कहते हैं वली अन लहू अस्ताजीरा अलल अमली और इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से हर एक के लिए जायज है कि वो किसी मुलाजिम को अमल पर उजरत के साथ रखे, तो दोनों के लिए जायज है। तो वह तहसील बगैर इवज़िन दूनहू और नफा हासिल करना बगैर इवज़ के दूनहू वो तो इस इस्तिजार से उजरत पर रखने से कम दर्जे का है, फयम लिकुहू, लिहाजा इसका भी वो मालिक होगा। जब दोनों में से हर एक इस बात का मालिक है कि वो उजरत पर किसी को रख सकता है कि वो इनके साथ तिजारत का काम करे, तो बगैर उजरत के कोई इनके लिए काम करे, इसके वो बतरीके औला मालिक होंगे, लिहाजा वो बिजात के तौर पर किसी को अपना माल दे सकते हैं। भाई तो कहते हैं वह तहसील बगैर इवजिन, और इवज के बगैर नफा हासिल करना, दू न हो, वो तो उजरत पर रखने से कम दर्जे का है, फयम लिकुहू, तो दोनों में से हर एक बतरीके औला इसका मालिक होगा, वह कजा लहू अयूदियाहू। इसी तरह याद रखो, दो आदमियों ने आपस में अकद शिरकत किया है तो दोनों में से हर एक के लिए जायज है कि वो अपना माल बतौर अमानत के किसी के पास रखवा सकते हैं, इसलिए क्योंकि ताजरों को जरूरत पेश आती रहती है, हर वक्त वो सारा माल अपने साथ नहीं रख सकते, बाज़ औक़ात जरूरत पेश आती है तो वो अपना माल कुछ वक्त के लिए किसी के पास बतौर अमानत के रखवा देते हैं। भाई तो कहते हैं वकदा लहू अयूदियाहू, और इसी तरह इन दोनों में से हर एक के लिए यह जायज होगा कि वह उस माले शिरकत को बतौर अमानत के रखवा दे, लिअन्नहू मुअतादुन, इसलिए क्योंकि यह भी मुअताद है, यानी ताजिरों में इसकी आदत जारी है, ताजिर इस तरह करते रहते हैं, वला यजिदु ताजिरु मिनहु बुद्दन, और ताजिर इसके सिवा चारा नहीं पाता, बाज़ोका ताजिर इसके अलावा चारा नहीं पाता, बाज औकात हालात ठीक नहीं है, मसलन जैद के पास माल है और इस वक्त वो दूसरी जगह जाएगा तो रास्ते में खतरा है, तो वो अपना माल किसी के पास बतौर अमानत के रखवा सकता है। तो कहते हैं वला यजिदु ताजिरु मिनहु बुद्दन, बुद्दन का माना कर लें चारे के, भाई वला यजिदु ताजिरु मिनहु बुद्दन, और बाज औकात इस अमानत रखवाने से ताजिर चारा नहीं पाता, यानी इसके अलावा और कोई सूरत नहीं होती। भाई आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयदफाहू मुजारबतन, वयदफा ये मंसूब है, इसका अतफ है पीछे जो आया था कि दोनों में से हरे के लिए जायज है, अं युब्ज़ी अल माला, तो ये युब्ज़िया पर आतफ है और युब्ज़िया पर अन दाखिल है, वो नसब दे रहा है, तो यदफा का उसी पर आतफ है, तो ये भी मंसूब होगा। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयदफाहू मुजारबतन, और दोनों शरीकों में से हर एक जो है वो माले शिरकत बतौर मुजारबत के दे सकता है, ले अन्नहा दून शिरकती, इसलिए क्योंकि मुजारबत शिरकत से कम है, फततजम्मनुहा, तो शिरकत इसको मुतजम्मिन है। मैंने आपको जाब्ता बतलाया कि कोई भी चीज अपने से कम दर्जे की चीज को तो अपना ताबिया बना लेती है, लेकिन अपने बराबर वाली या अपने से ऊपर वाली चीज को वो ताबिया नहीं बना सकती, तो ये जो मुजारबत है ये शिरकत से कम दर्जे की है, जब कम दर्जे की है तो शिरकत के जिमन में मुजारबत भी आ गई, लिहाजा दोनों माले शिरकत को मुजारबत के तौर पर किसी तीसरे आदमी को दे सकते हैं। भाई और ये मुजारबत शिरकत से कम दर्जे की कैसे है, कहते हैं देखो आकदे शिरकत के अंदर नफा आए तो दोनों आपस में तकसीम करते हैं, इसी तरह अकदे शिरकत में अगर नुकसान आए तो नुकसान में भी दोनों शरीक होते हैं, दोनों पर नुकसान आता है क्योंकि माल दोनों का है तो नुकसान भी दोनों का होगा, जबकि मुजारबत जो है मुजारबत के अंदर तो सारा माल रबुल माल का होता है और वो जो मुजारिब है वो तो सिर्फ तिजारत कर रहा है, वो तो सिर्फ अमल कर रहा है, तो मुजारबत के अंदर जितना भी नुकसान आए वो सारा मुजारिब का होता है। मैंने आपको बतलाया था अहनाफ का अहम जाबता है भाई, और जो हदीस भी पीछे गुजरी थी कि जब दो आदमी शिरकत करें तो नफे के अंदर कमी बेशी जायज है, एक का माल भी 50%, दूसरे का माल भी 50%, तो नफा जितना मर्जी तय कर ले, मसलन जैद कहता है मैं 70% नफा लूंगा और अमर को सिर्फ 30% नफा दूंगा, तो ये जायज है, माल बराबर लेकिन नफे में कमी बेशी, लेकिन नुकसान के अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती, जिसका जितना माल उतना ही नुकसान, लिहाजा जैद का माल 50% है तो नुकसान के अंदर भी जैद का हिस्सा 50% ही होगा। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा बात चल रही है मुजारबत की, मुजारबत के अंदर देखो सारा माल रबुल माल का होता है, लिहाजा सारा नुकसान भी किसका होगा, रबुल माल ही का होगा, मुजारिब का तो कोई माल नहीं, लिहाजा नुकसान में भी उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। बात समझ में आ गई, बात यह चल रही थी कि जो मुजारबत है यह शिरकत से कम दर्जे की है, तो यह किस तरह कम दर्जे की है, तो मैंने बतलाया कि शिरकत के अंदर जब नुकसान होता है तो नुकसान दोनों शरीकों पर आता है, और मुजारबत के अंदर जो नुकसान होता है वो एक शरीक पर आता है, यानी सिर्फ रब्बुल माल पर आता है। तो मालूम हुआ मुजारबत कम दर्जे की चीज है, शिरकत में दोनों का नुकसान है, मालूम हुआ ये उससे ऊपर के दर्जे की चीज है। तो जब मुजारबत शिरकत से कम दर्जे की चीज है तो आकदे शिरकत मुजारबत को भी मुतजमिन है, दोनों शरीक बतौर मुजारबत के भी माल किसी को दे सकते हैं। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयदफाहू मुजारबतन, और दोनों में से हर एक जो है माले शिरकत को बतौर मुजारबत के दे सकता है, लिअन नहादून शिरकती, इसलिए क्योंकि मुजारबत शिरकत से कम दर्जे की है, फतातजम मनुहा, तो शिरकत इस मुजारबत को मुतजमिन है। वान अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहिब से एक रिवायत यह है कि अन्नहु लैसा लहू जालिक, कि दोनों में से हर एक जो है उनको यह हक नहीं है, उनके लिए यह जायज नहीं है कि वह मुजारबत के तौर पर माल दें। यह दूसरी रिवायत आ गई इमाम साहिब से, और इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं मुजारबत के तौर पर क्यों नहीं माल दे सकते? कहते हैं लिअन्नहु नौउ शिरकतिन, इसलिए क्योंकि मुजारबत भी एक किस्म की शिरकत है, इसलिए क्योंकि मुजारबत भी एक किस्म की शिरकत है। भाई किस तरह शिरकत है? कहते हैं आप देखते नहीं मुजारबत में जब नफा आता है दोनों उसमें शरीक होते हैं, तो शिरकत आ गई या नहीं? मालूम हुआ मुजारबत में भी एक किस्म की शिरकत आ जाती है, अगरचे नफे में आती है लेकिन आती तो शिरकत है भाई, लिहाजा मुजारबत भी एक किस्म की शिरकत है। और कोई भी चीज अपने से अदना दर्जे की चीजों को तो अपना ताबिया बना सकती है, अपने बराबर वाली या अपने से ऊपर वाली चीज को अपना ताबिया नहीं बना सकती। तो मुजारबत भी जब एक नौ की शिरकत है तो ये शिरकत के बराबर के दर्जे की चीज हुई, तो लिहाजा ये अकदे शिरकत जो है वो अकदे मुजारबत को मुतजमीन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये माना है, कहते हैं लिअन्नहु नौउ शिरकतिन, इसलिए क्योंकि मुजारबत जो है वो भी एक किस्म की शिरकत है, वल असहु, और ज्यादा सही ये है। भाई इधर देखिए इमाम साहिब से दो रिवायतें आ गईं, एक तो मतन के अंदर आया कि दोनों शरीक बतौर मुजारबत के ये माले शिरकत किसी को दे सकते हैं, और दूसरा इमाम साहब से एक रिवायत ये है कि दोनों शरीकों को ये हक हासिल, वो माले शिरकत को बतौर मुजारबत के किसी को नहीं दे सकते। तो साहिब हिदायत बतलाएंगे वो जो मतन में आया है वो कौल ज्यादा सही है, दूसरा कौल भी सही, लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है कि बतौर मुजारबत के ये माल किसी को दे सकते हैं। भाई तो कहते हैं वल असहु वल अव्वलु, और ज्यादा सही जो है वो पहला कौल है, वह हुआ रिवायतुल असली, और वो असल यानी मबसूत की रिवायत है। ये जो मतन में आया कि दोनों शरीक बतौर मुजारबत के माल दे सकते हैं, ये असल यानी मबसूत की रिवायत है और ये ज्यादा सही है। तो कहते हैं वह हुआ रिवायतुल असली, और ये असल की रिवायत है यानी मबसूत की, लिअन्न शिरकत गैरु मकसूदिन, भाई वजह जिक्र कर रहे हैं, वजह जिक्र कर रहे हैं कि दोनों शरीक मुजारबत के तौर पर यह माले शिरकत किसी को दे सकते हैं। तो इस पर एतराज होता है कि अभी एक दलील ऊपर गुजरी कि जो मुजारबत है यह भी तो एक किस्म की शिरकत है, तो जवाब दे रहे हैं कि हां मुजारबत के अंदर भी एक किस्म की शिरकत आती है, लेकिन वहां शिरकत मकसूद नहीं, वहां नफा हासिल करना मकसूद है, नफे में शिरकत तो आ रही है लेकिन शिरकत मकसूद नहीं, वहां पर असल में नफा हासिल करना मकसूद है, लिहाजा मुजारबत की इजाजत होगी, दोनों शरीक बतौर मुजारबत के अपना माल किसी तीसरे को दे सकते हैं। भाई तो कहते हैं लिअन्न शिरकत गैरु मकसूदिन, इसलिए क्योंकि ये शिरकत जो मुजारबत में आ रही है ये मकसूद नहीं है, वह इन्नमल मकसूद तहसील रिब्ह, और मकसूद जो है वो तो नफे को ही हासिल करना है, कमा इदस्ता जरा बी अजरीन, जैसे कि उजरत पर किसी को रखा। देखिए भाई तिजारत के अंदर बाज औकात किसी दूसरे आदमी को मुलाजिम रखा जाता है कि वो तिजारत के कामों में इनकी मदद करे, तो देखो वो जो मुलाजिम है उसके अमल की वजह से नफा हासिल होगा, वो भी काम कर रहा है तो तिजारत में नफा हासिल होगा, और नफा हासिल ना भी हुआ फिर भी उसको उजरत तो देना पड़ेगी, उस मुलाजिम को उजरत तो देना पड़ेगी, जबकि मुजारबत जो है उसके अंदर अगर नफा ना हुआ तो रब्बुल माल पर कोई जमान और कोई उजरत नहीं आएगी। तो जब उजरत के साथ अमल करवाना जायज है तो बगैर उजरत के अमल करवाना यानी मुजारबत करना बतरीके औला जायज होगा। सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं कमा इदस्ता अजरा भी अजरीन, जैसे कि दोनों में से किसी ने उजरत पर किसी को रखा कि वो इनके लिए काम करे और फिर उसके जरिए नफा हासिल हो। तो जैसे इसकी इजाजत है यानी उजरत पर रखने की इजाजत है, तो बगैर उजरत के काम करवाने की वो बतरीके औला इजाजत होगी। तो कहते हैं कमा इदस्ता अजरा भी अजरीन, जैसे कि उजरत पर किसी को रखा, बल औला बल्कि बतरीके औला मुजारबत की इजाजत होगी, इसलिए क्योंकि उजरत पर किसी को रखा है वहां तो उजरत भी देना पड़ेगी, और मुजारबत के तौर पर किसी को माल दिया है तो वहां नफा ना भी हुआ तो भी कोई उजरत नहीं देना पड़ेगी। भाई बल औला बल्कि बतरीके औला मुजारबत की इजाजत होगी, लिअन्नहु तहसीलुन बिदून ज़मानिन फी ज़िम्मतिही, इसलिए क्योंकि यह नफा हासिल करना है बगैर किसी ज़मान के उसके जिम्मे में। मुजारबत के अंदर अगर नफा नहीं तो मुजारिब को कोई उजरत नहीं देना पड़ती। कहते हैं लिअन्नहु तहसीलुन, इसलिए क्योंकि ये जो अक़्द मुजारबत है ये नफा हासिल करना है, बिदून ज़मानिन फी ज़िम्मतिही, बगैर किसी ऐसे जमान के जो उस शख्स के जिम्मे में हो, बिखिलाफ ही शिरकती बखिलाफ शिरकत के, दो आदमियों ने आपस में अक़्द शिरकत किया है, वो इस माल शिरकत के साथ किसी और के साथ शिरकत नहीं कर सकते, वो इस माल शिरकत में किसी और के साथ शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज अपने बराबर की चीज को अपना ताबिअ नहीं बना सकती। बेखिलाफ ही शिरकती बखिलाफ शिरकत के, हैसुल्ला यमलिकुहा, क्योंकि इसका मालिक नहीं है, यानी दोनों में से कोई एक भी इसका मालिक नहीं है कि वो माल शिरकत पर किसी और के साथ अक़्द शिरकत कर ले। कहते हैं लिअन्न शैअ ला यस्तत्बिउ मिस्लहु, इसलिए क्योंकि कोई चीज जो है अपने मिसल को अपना ताबिअ नहीं बना सकती, अपने बराबर वाली चीज को अपना ताबिअ नहीं बना सकती। यहां तक बात समझ में आ गई। भाई यहां एतराज होता है कि आपने हमें जाबता बताया कि कोई चीज अपने से अदना को तो अपना ताबिअ बना सकती है, अपने बराबर वाली या अपने से ऊपर वाली चीज को अपना ताबिअ नहीं बना सकती, लेकिन हम आपको कई मिसालें दिखाते हैं कि जहां एक चीज अपने बराबर वाली चीज को अपना ताबिअ बना रही है। जैसे एक गुलाम के साथ आका अकदे किताबत कर लेता है, तो ये जो मुकातब है ये जाएगा काम वगैरह करेगा और पैसे कमाकर लाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो याद रखो ये जो मुकातब है ये आगे और मुकातब बना सकता है। मसलन इस मुकातब ने माल जमा करना शुरू किया और गुलामों की तिजारत शुरू कर दी, और फिर इसने उसके अंदर बास गुलामों को मुकातब बना दिया। तो याद रखो मुकातब जो है वो आगे अपने गुलामों को मुकातब बना सकता है। तो देखो एक चीज अपने मिसल को अपना ताबिअ बना रही है, किताबत को अपना ताबिअ बना रही है, या इसी तरह आका ने अपने गुलाम को तिजारत की इजाजत दे दी, तो ये जो अब्दे माजून है इसने तिजारत शुरू कर दी, ये आका को पैसे कमाकर लाकर दे रहा है, और इसने गुलामों की तिजारत शुरू कर दी, और इसने आगे अपने गुलाम को भी इजाजत दे दी कि तुम भी तिजारत कर सकते हो। तो देखो अब्दे माजून आगे अपने गुलाम को अब्दे माजून बना रहा है। तो देखो इजन जो है वो इजन को अपना ताबिअ बना रहा है, हालांकि कोई चीज अपने बराबर वाली चीज को अपना ताबिअ नहीं बना सकती। इसी तरह इमाम फर्ज नमाज पढ़ता है और पीछे मुक्तदी भी फर्ज नमाज में उसके साथ शरीक होते हैं, तो इमाम की नमाज मुक्तदियों की नमाज को अपने जिम्मन में लिए हुए होती है। इमाम की नमाज सही हो गई तो मुक्तदियों की नमाज भी सही होगी, इमाम की नमाज फासिद हो गई तो मुक्तदियों की नमाज भी फासिद हो जाएगी। तो यहां पर भी देखो इमाम के फर्ज जो हैं वो मुक्तदियों के फर्ज को अपना ताबिअ बना रहे हैं, हालांकि आपने हमें बताया कोई चीज अपने बराबर की चीज को अपना ताबिअ नहीं बना सकती। या इसी तरह आप तरावीह पढ़ते हैं, अब ये तरावीह ये तो फर्ज नहीं है, ये तो नफल है, और देखो इमाम भी नफल वाला और मुक्तदी भी नफल वाले, तो नफल जो है नफल को अपना ताबिअ बना रहा है। एतराज समझ में आया भाई कि आपने हमें बताया कोई चीज अपने बराबर वाली चीज को या अपने से ऊपर वाली चीज को अपना ताबिअ नहीं बना सकती, लेकिन किताबत को ताबिअ बना लेती है, इज़न फी तिजारत ये इज़न फी तिजारत को अपना ताबिअ बना लेता है, मुफ्तरिस को अपना ताबिअ बना लेता है, मुतनफिल जो है मुतनफिल को अपना ताबिअ बना लेता है। तो जवाब याद रखना कि ये जो मुकातब को आगे मुकातब बनाने की इजाजत होती है या अब्दे माजून को आगे अब्दे माजून बनाने की इजाजत होती है, वो इस वजह से नहीं कि किताबत किताबत को ताबिया बना लेती है या इजन जो है वो इजन को ताबिया बना लेता है, बल्कि ये जो मुकातब है और अब्द माजून है इनको आजादी दी गई है माल कमाने की, ये जिस तरह से चाहें माल कमा सकते हैं। और जब मुकातब आगे मुकातब बनाएगा तो उस मुकातब से उससे माल वसूल करेगा, या इसी तरह एक अब्द माजून आगे अब्द माजून बनाएगा तो उसके जरिए भी ये माल कमाएगा। तो यहां पर ये जो मुकातब को मुकातब बनाने की इजाजत है या माजून को माजून बनाने की इजाजत है वो इस वजह से है कि इनको कमाई में आजाद छोड़ दिया है शरीयत ने, ये जिस तरीके से भी कमाई करना चाहे कर सकते हैं। तो यहां पर मुकातब को जो मुकातब बनाने की और माजून को माजून बनाने की जो इजाजत है वो ताबिया बनाने की वजह से नहीं है बल्कि कमाई में आजाद छोड़ने की वजह से है कि इनको कमाई में आजाद छोड़ दिया है शरीयत ने, जिस तरह भी ये माल कमाना चाहे तो कमा सकते हैं। बात समझ में आ गई। और बाकी के मुफ्तरिस के पीछे मुफ्तरिस नमाज अदा करता है और मुतनफिल के पीछे मुतनफिल नमाज अदा करता है तो कहते हैं उसमें कियास तो यही तकाजा करता है, यह जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने इजमा की वजह से यहां कियास को तर्क कर दिया, यहां हमने इजमा की वजह से कियास तर्क कर दिया क्योंकि तमाम उम्मत का इजमा है कि इस तरह नमाज हो जाती है। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए, काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह युवक किला मैयसर रफूफी व युवक किला, इसको भी मनसूब पढ़ेंगे, इसका आतफ भी उसी तरह अयुबजिया पर है और उस पर अन दाखिल था नसब दे रहा था तो ये युवक किला ये जो मातूफ है ये भी मनसूब होगा। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह युवक किला और इन दोनों में से हर एक जो है वो वकील बना सकता है, मैं यतसर्रफु फीही उस शख्स को जो उस माल के अंदर तसर्रुफ करे, उस माले शिरकत में तसर्रुफ करे किसी को वकील बना सकते हैं, लिअन्न तौकील बिल बैउ व शिरा मिन तवाबिउ तिजारती, इसलिए क्योंकि बैउ शिरा का वकील बनाना ये तिजारत के तवाबिउ में से है। तौकील का क्या माना? वकील बनाना। लिअन्न तौकील बिल बैउ व शिरा, इसलिए क्योंकि बैउ शिरा पर वकील बनाना मिन तवाबिउ तिजारती, ये तिजारत के तवाबिउ में से है, तिजारत के अंदर ये चीजें होती हैं, वह शिरकतुन अकदत लि तिजारती, और ये शिरकत जो है ये भी तिजारत पर मुनाकिद हुई है लिहाजा इसके अंदर भी वकील बनाने की इजाजत होगी। बिखिलाफिल वकील बि शिराई, हां बखिलाफ वकील बि शिरा के, भाई दो आदमियों ने आपस में अक्द शिरकत कर लिया है तो तिजारत के अंदर वकील बनाने की जरूरत पेश आती रहती है, लिहाजा दोनों आगे किसी को वकील बना सकते हैं जो इस माले शिरकत के अंदर तसर्रुफ करे, लेकिन अक्द शिरकत के अलावा कोई आदमी दूसरे को वकील भी शिरा बनाता है। अक्द शिरकत को जरा एक तरफ रख दें, एक अलग मसला बयान कर रहे हैं साहिबे हिदाया, कोई शख्स दूसरे को कोई चीज खरीदने के लिए वकील बनाता है, मसलन मैंने जैद से कहा कि ये 10 लाख रुपए ले जाओ और मेरे लिए एक गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो आप यहां शिरकत नहीं है, मैंने एक आदमी को अपना वकील बनाया गाड़ी खरीदने के लिए, तो जैद जो मेरा वकील है उसके लिए जायज नहीं है कि वो आगे किसी और को वकील बना दे कि तुम गाड़ी खरीद लाओ, नहीं भाई मैंने तो इसकी इजाजत नहीं दी, मेरा एतमाद तो जैद पर है कि ये समझदार आदमी है ये अच्छी चीज खरीद कर लाएगा, किसी दूसरे पर मेरा एतमाद नहीं, लिहाजा वकील भी शिरा के लिए जायज नहीं है कि वो आगे किसी और को वकील बना दे। हां अलबत्ता अगर मैंने जैद को खुद ही इजाजत दे दी कि तुम खुद जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ या किसी और को भेज दो और मेरे लिए गाड़ी खरीद लाए तो फिर उस वकील भी शिरा के लिए भी आगे वकील बनाना जायज है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इल वकील भी शिराई, बखिलाफ वकील भी शिरा के है सुला यम लिखू, क्योंकि वो मालिक नहीं होता अयुवक किला गए रहू कि वो अपने अलावा किसी और को वकील बना दे, ले अनहू आकदुन खास सुन, इसलिए क्योंकि ये जो वकील भी शिरा जिसने दूसरे को बनाया है ये ऐसा खास आकद है, तो लिबा मिनहू तहसील उल आईनी कि इसके जरिए तलब किया गया है एक मुआयन चीज के हासिल करने को। भाई देखिए मैंने आपको वकील बनाया कि आप मेरे लिए गाड़ी खरीद कर लाएं, तो मालूम हुआ मैंने आपके साथ एक खास आकद किया है कि फला चीज खरीद कर ले आओ, तो अगर आपको यह इजाजत हो कि आप आगे भी किसी और को वकील बना सकते हैं तो यह तो गोया वकालत भी शिरा वो ताबिया बना रही है वकालत भी शिरा को। हालांकि कोई चीज अपने से अदना चीज को तो अपना ताबिया बना सकती है, वो उसके अंदर शामिल होती है, लेकिन अपने बराबर या अपने से ऊपर की चीज को तो अपना ताबिया नहीं बना सकती। लिहाजा जब आप वकील भी शिरा हैं तो आपके लिए आगे किसी दूसरे को इसी चीज के लिए वकील भी शिरा बनाने की इजाजत नहीं होगी। बात समझ में आ गई। यह माना है ले अन्नहू अक्दुन खासुन, इसलिए क्योंकि ये जो शिरा के लिए वकील बनाया गया है यह एक ऐसा खास आकद है, तुलिबा मिनहू तहसीलुल आइनी, कि जिसके जरिए किसी मुअय्यन चीज को हासिल करने को तलब किया गया है, फला यस्ततबिउ मिसलहू, तो यह अपने मिसल को यानी अपने बराबर की चीज को अपना ताबिया नहीं बना सकती। बात समझ में आ गई। काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयदहू फिल माली यदु अमानतिन, और हर एक का जो कब्जा है उस माले शिरकत के अंदर यदु अमानतिन, वो अमानत वाला कब्जा है। याद रखो ये जो माले शिरकत के अंदर दोनों शरीकों का कब्जा होता है ये अमानत वाला कब्जा है, और आप जानते हैं माले अमानत किसी के पास हलाक हो जाए तो उस पर जमान नहीं आया करता, इल्ला ये कि अगर उसने कोई तादी की है कोई ज्यादती की है तो फिर उस पर जमान आएगा। तो लिहाजा जैद और अमर ने अक़्द शिरकत कर लिया, दोनों ने 10-10 लाख रुपए मिला दिए और वो सारा माल अब जैद के पास है, तो ये माल जैद के पास बतौर अमानत के है। तो कहते हैं वयदुहु फिल माली यदु अमानतिन, और दोनों में से हर एक का जो कब्जा है उस माले शिरकत के अंदर वो अमानत वाला कब्जा है। लिअन्नहु कब्ज़ल माल बि इज़्निल मालिक, वजह जिक्र कर रहे हैं कि अमानत वाला कब्जा क्यों है, कहते हैं इसलिए क्योंकि जिस शरीक के पास भी ये माल है उसने मालिक की इजाजत से इस माल पर कब्जा किया है। अगर मालिक की इजाजत के बगैर कब्जा किया जाए वो तो गसब कहलाता है, लेकिन इसने जो माली शिरकत पर कब्जा किया है वो मालिक की इजाजत से कब्जा किया है, और नीज ये जो माल पर कब्जा किया है ये बदल के तौर पर या वसीका के तौर पर नहीं है। बाज़ औकात मालिक की इजाजत से एक माल पर कब्जा किया जाता है लेकिन बदल के तौर पर या वसीका के तौर पर, वहां फिर जमान आता है। मसलन देखो जैद के पास एक गाड़ी है, अमर उसके पास आया और आकर कहने लगा ये गाड़ी आप मुझे बेच दीजिए, और दोनों ने आपस में भावताव शुरू कर दिया। जैद मसलन 15 लाख मांग रहा है और अमर उसको सिर्फ 10 लाख देना चाहता है, तो जैद और अमर के दरमियान उस गाड़ी का भावताव चल रहा है, अभी जो है बै पूरी नहीं हुई, आकद नहीं हुआ, लेकिन उस गाड़ी की कीमत पर बातचीत चल रही है। तो इसी दौरान अमर को जाना पड़ा, अमर ने कहा कि ये गाड़ी आप फिलहाल मेरे हवाले कर दें, हम कल बैठकर फिर बाकी बात कर लेंगे। चुनांचे जैद ने गाड़ी उसके हवाले कर दी और अमर उस गाड़ी को ले गया। अब मुझे बताइए ये जो जैद है ये था गाड़ी का मालिक, इसने गाड़ी अमर के हवाले की है, तो अमर ने मालिक की इजाजत से गाड़ी पर कब्जा किया है, लेकिन यह कब्जा उसने बदल के तौर पर किया है कि अमर वो गाड़ी का बदल देगा अगर उसने गाड़ी खरीद ली। तो यहां अमर ने जो गाड़ी पर कब्जा किया और गाड़ी अपने साथ ले गया, ये इसने बतौर अमानत के कब्जा नहीं किया बल्कि बतौर बदल के कब्जा किया है कि मेरे और जैद के दरमियान बै हो जाएगी तो मैं इस गाड़ी की कीमत जैद को दूंगा। तो ये जो अमर ने गाड़ी पर कब्जा किया और वो गाड़ी अपने साथ ले गया, ये कब्जा किस तरीके पर है? ये अमानत के तरीके पर नहीं है बल्कि इस गाड़ी का बदल देने के तरीके पर है। लिहाजा अगर ये गाड़ी अमर के पास से चोरी हो गई या जल गई या एक्सीडेंट हो गया और तबाह हो गई तो अमर को जमान देना पड़ेगा, क्योंकि अगरचे अमर ने इस गाड़ी पर मालिक की इजाजत से कब्जा किया था लेकिन बदल के तरीके पर कब्जा किया था कि वो इसका बदल देगा। भाई बात समझ में आ गई। इसी तरह बाज औकात मालिक की इजाजत से एक चीज पर कब्जा किया जाता है लेकिन वो सिर्फ एतमाद के तौर पर, मसलन एक आदमी दूसरे के पास जाता है कि मुझे 10 लाख रुपए कर्ज दे दीजिए, वो दूसरा आदमी कहता है भाई अपनी कोई चीज मेरे पास रहन रखवाओ तो फिर मैं तुम्हें 10 लाख कर्ज दूंगा, तो ये अपनी गाड़ी उसके पास बतौर रहन के रखवा देता है। अब मुझे बताइए ये मुर्तहिन ने जो अपने पास गाड़ी रोक ली, अपने पास जो गाड़ी रख ली, ये किस लिए रखी है? ताकि एतमाद उसको रहे कि वो अपना कर्जा वसूल कर सकता है। अगर उस राहिन ने पैसे अदा न किए या उस राहिन का इंतकाल हो गया तो मुर्तहिन इस गाड़ी को बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लेगा। तो यहां पर भी उस मुर्तहिन ने उस मालिक की इजाजत से गाड़ी पर कब्जा किया है, लेकिन बतौर अमानत के कब्जा नहीं किया बल्कि एतमाद के तरीके पर कब्जा किया है ताकि उसको एतमाद रहे कर्जे की वसूली का। भाई तो बात चल रही थी शिरकत की कि शिरकत का माल दोनों शरीकों में से जिसके पास भी है ये अमानत के तौर पर है, इसलिए क्योंकि यहां पर एक शरीक ने मालिक की इजाजत से उस माल पर कब्जा किया है। जब मालिक की इजाजत से कब्जा किया है तो यह गसब भी नहीं, और नीज ये जो कब्जा किया है इसने इस माल पर, इसने बदल के तौर पर भी कब्जा नहीं किया और इसने वसीका यानी एतमाद के तौर पर भी कब्जा नहीं किया, लिहाजा इन सूरतों में जमान नहीं आएगा। जब जमान नहीं आएगा तो मालूम हुआ ये जो माल शिरकत पर जो कब्जा है ये बतौर अमानत के है। भाई तवज्जो है, क्योंकि कब्जा या तो मालिक की इजाजत से होता है या उसकी इजाजत के बगैर होता है। इजाजत के बगैर हो तो वह गसब है और उसमें भी जमान आता है, और अगर मालिक की इजाजत से हो तो फिर या तो वह कब्जा बदल के तौर पर होता है या वसीका के तौर पर होता है, और वह भी यहां पर नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ यह जो माली शिरकत पर एक शरीक ने कब्जा किया है यह बतौर अमानत के है। तो कहते हैं लिअन्नहु कबज़ल माल अभी इस निल मालिक, इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से एक ने मालिक की इजाजत से इस माल पर कब्जा किया है। ला अला वजहिल बदली, ना तो बदल के तरीके पर, वल वसीकति और ना ही वसीका यानी एतमाद के तरीके पर। याद रखो वसीका सा के साथ है, वसीका कहते हैं जो रसीद होती है। कोई आदमी किसी से कर्ज लेता है तो वो रसीद लिख कर दे देता है कि मैंने तुमसे इतना कर्ज लिया, कोई दस्तावेज दे देता है, कोई कागज लिखकर दे देता है। तवज्जो है, तो ये जो रहन है ये भी वसीका है, दस्तावेज की तरह है, इसके जरिए भी इंसान अपना कर्जा वसूल करता है, उसको एतमाद होता है, जैसे रसीद के जरिए एतमाद होता है। भाई तो कहते हैं ना तो ये बदल के तरीके पर कब्जा है, वल वसीकती और ना ये वसीका यानी रसीद के तौर पर कब्जा है। फसारा कल वदीआती, तो ये कब्जा किसकी तरह हो गया, अमानत की तरह हो गया। भाई आगे देखिए, कालब अम्मा शिरकत सनाई वयुसम्मा शिरकत तकबुली कल खयातैनी व सबागैनी यश्तरिकानी अला अन तकब्बल अल अमाल व यकून अल कस्बु बैनहुमा फयजूजु ज़ालिक। भाई अब शिरकतु सनाइअ का जिक्र आ गया। भाई ये तीसरी किस्म की शिरकत है। भाई सनाइअ याद रखो ये जमा है सिनात की, और सिनात कहते हैं कारीगरी और पेशे को। तो ये शिरकत जो है ये शिरकतु सनाइअ कहलाती है। तो शिरकतु सनाइअ के अंदर दो कारीगर या दो पेशे वाले जो हैं वो मिलकर आपस में अक्दे शिरकत कर लेते हैं कि जो भी काम मिलेगा वो दोनों मिलकर करेंगे और जो उजरत मिलेगी उसमें दोनों शरीक होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, शिरकतु सनाइअ। और याद रखना इसी को शिरकत तकबुल भी कहते हैं। तकबुल का माना कबूल करना कि दोनों में से जिसको भी काम मिलेगा वो उसको कबूल कर लेगा, ले लेगा। और इसी का नाम शिरकत अमाल भी है, और यहां पर भी दोनों अमल के अंदर शिरकत कर रहे हैं कि जो काम मिलेगा दोनों करेंगे उसको। भाई और नीत इसी का नाम शिरकत अबदान भी है। भाई कि काम के करने में दोनों बदन क्या होंगे, शरीक होंगे। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह अम्मा शिरकत सनाई, और बाकी शिरकत सनाइअ जो है वह युसम्मा शिरकत तकबुली, और इसको शिरकत तकबुल भी कहते हैं। कल खयातैनी, जैसे कि दो दर्जी हैं, वह सब्बागैनी और दो रंगरेज हैं। खयात भाई दर्जी को कहते हैं जो कपड़े सीता है, और सब्बाग जो है रंगरेज को कहते हैं। याद रखो एक है रंग बनाने वाला, उसको रंगसाज कहते हैं, और एक है कपड़े को रंग देने वाला, उसको रंगरेज कहते हैं। तो जो रंगरेज है उसको सब्बाग कहते हैं अरबी जुबान में। कहते हैं कल खयातैनी, जैसे कि दो दर्जी हैं, वह सब्बागैनी और दो रंगरेज हैं। यश तरीकानी, ये दोनों आपस में शिरकत कर लेते हैं। अला अन तकब्बल अल अमाला, इस शर्त पर के दोनों अमल को कबूल करेंगे। देखिए तकब्बला तस्निया का सीगा है, अला अन तकब्बला इस शर्त पर के दोनों कबूल करेंगे। अल अमाला यानी अमलों को, कामों को, और फिर दर्ज इबारत में तकब्बला के अंदर जो तस्निया कालिफ है वो गिर जाएगा। तो कहते हैं यश तरीकान, ये दोनों आपस में शिरकत कर लेते हैं, अला अन तकब्बल अल अमाल, इस बात पर कि दोनों इन कामों को कबूल करेंगे, व यकून उल कस्बु बैनहुमा, और कमाई जो है वो दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी, फयजूज़ु ज़ालिका, तो ये जायज है। तो देखो शिरकत सनाए के अंदर दो पेशे वाले आपस में मिलकर अकद कर लेते हैं, और इसमें यह भी याद रखो दोनों का पेशा एक होना भी जरूरी नहीं है, मसलन एक धोबी है और एक दर्जी है भाई, लेकिन अकद शिरकत आपस में कर लेते हैं कि जो भी काम मिलेगा हम दोनों कबूल करेंगे। तो अब इसका माना यह नहीं, आप ये ना समझें कि दर्जी को भी धोबियों वाला काम करना पड़ेगा या धोबी को भी दर्जियों वाला काम करना पड़ेगा, नहीं भाई, माना यह है कि दर्जी अपना काम भी कबूल करेगा और धोबियों वाला काम भी कबूल करेगा, जिससे भी मिले धोबियों वाला काम वो लेता जाएगा और वो धोबियों वाला काम अपने साथी के सुपुर्द करता जाएगा, और वो जो धोबी है वो धोबियों वाला काम भी लेगा अपने लिए और दर्जियों वाला कोई काम मिलेगा वो भी लेता जाएगा और वो अपने साथी के सुपुर्द करता जाएगा। तो इस तरह दोनों आपस में शिरकत कर लेंगे। मालूम हुआ शिरकत आमाल के अंदर, शिरकत सनाया के अंदर दोनों कारीगरों का एक पेशे वाला होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों का पेशा अलग हो यह भी जायज। और नीज यह भी याद रखना एक ही जगह पर दोनों का बैठना भी जरूरी नहीं है, दोनों शरीकों में से एक जो है वो एक बाजार के अंदर उसकी दुकान है और दूसरे शरीक की दुकान दूसरे बाजार में है, यह भी जायज है भाई। तो कहते हैं ये जायज है, वहां दा इंदना, और ये हमारे नजदीक है। वकाला जुफर व शाफई रहमहुमल्लाह ताला, और इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह फरमाते हैं ला यजूजू, ये जायज नहीं, क्योंकि उनके नजदीक नफा जो है वो माल की फरा है और यहां तो माल है ही नहीं, यहां तो अमल है दोनों का, अपने अमल के जरिए पैसे कमाएंगे, तो जब माल नहीं तो ये शिरकत भी सही नहीं उनके नजदीक भाई। तो कहते हैं वकाल जुफर व शाफई रहमहुमल्लाह ताला ला यजूज़ू, और इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि शिरकतु सनाए जायज नहीं है, लिअन्न हादिही शिरकतुन ला युफीदु मकसूदहा, इसलिए क्योंकि ऐसी शिरकत है, ला युफीदु मकसूदहा, जो अपने मकसद का फायदा नहीं दे रही। शिरकत का क्या मकसद होता है? माल को बढ़ाना, नफा हासिल करना, और यह शिरकत अपने मकसूद यानी माल के बढ़ाने का फायदा नहीं दे रही, क्योंकि यहां माल ही नहीं है, किस चीज को बढ़ाना है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा बिही शिरकतुन ला युफीदु मकसूदहा, इसलिए क्योंकि ऐसी शिरकत है, ला युफीदु मकसूदहा, जो अपने मकसद का फायदा नहीं दे रही। वह हुआ तस्मीर भाई, समरा युसमिरु, तस्मीर का माना है माल को बढ़ाना। तो कहते हैं ये शिरकत अपने मकसूद का फायदा नहीं दे रही, वह हुआ तस्मीरु, और वो माल को बढ़ाना है, लिअन्नहु लाबुद्द मिन रासिल माली, इसलिए क्योंकि रासुल माल का होना जरूरी है, रासुल माल होगा तो उसको बढ़ाया भी जाएगा भाई, बढ़ाया भी जाएगा, और यहां तो रासुल माल ही नहीं है। वहां दा, और ये इस वजह से, ले अन्न शिरकत फिर रिब ही, इसलिए क्योंकि नफे के अंदर जो शिरकत होती है, तब तनी अल शिरकत फिल माली, इसकी बुनियाद जो है माल के अंदर शिरकत पर होती है, अला असली ही मा, इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह के जाबते पर, अला मा करर ना हो, उस वजह से जो हमने साबित कर दिया। नफे के अंदर शिरकत होती है किस वजह से? कि माल के अंदर शिरकत होती है, और यहां तो माल ही नहीं है भाई। आगे देखिए वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना, और हमारी दलील यह है कि अनल मकसूद अमीन हु तहसीलु, कि इस अकद शिरकत के जरिए जो मकसूद है वो नफा हासिल करना है। ये जो दो पेशे वाले आदमी ने आपस में अकद शिरकत कर लिया है, इसका मकसद माल हासिल करना है, नफा हासिल करना है, और नफा जो है वो माल का मोहताज नहीं, हमने पहले बयान किया था, बल्कि नफे की निस्बत अकद की तरफ की जाती है। ये जो दोनों ने आपस में अकद शिरकत किया है, और जब दोनों आपस में अकद शिरकत कर लेंगे तो दोनों एक दूसरे के वकील भी बन जाएंगे, और एक दोनों एक दूसरे के कफील और जामीन भी बन जाएंगे। जब दोनों में से हर एक पर जमान भी आ रहा है तो दोनों में से हर एक के लिए नफा लेना भी जायज होगा भाई। वलाना और हमारी दलील यह है कि अनल मकसूद अमीन हो तहसील हो कि इस अक़्द-ए शिरकत के जरिए जो मकसूद है वो नफा हासिल करना है, वह मुमकिन उन बितौकीली और नफा हासिल करना मुमकिन है वकील बनाने के जरिए, लिअन्नहु लम्मा कान वकीलन फिन निस्फी, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक जब निसफ अमल के अंदर वकील है और असीलन फिन निस्फी और निसफ अमल के अंदर वो असील है तो तहक्कत शिरकत फिल माल मुस्तफादी, तो शिरकत पाई गई फिल माल मुस्तफादी उस माल के अंदर जो हासिल हुआ, वला युश्तरत फी इत्तेहादुल अमल वल मकानी, और इसके अंदर शर्त नहीं होगा कि अमल और मकान में इत्तेहाद हो, दोनों पेशे वालों का अमल एक होना या दोनों के अमल की जगह एक होना यह शर्त नहीं है। तो कहते हैं वला युश्तरत फी इत्तेहादुल अमल वल मकानी, और इसके अंदर अमल और जगह का मुत्तहिद होना शर्त नहीं होगा, खिलाफन लि मालिक व जुफरा रहिमहुमल्लाहु तआला फीहिमा, बखिलाफ इमाम मालिक और इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, इन दोनों में इमाम मालिक और इमाम जुफर रहिमहुमल्लाह वो इन दोनों में इख्तिलाफ करते हैं, वो फरमाते हैं पेशा भी एक होना चाहिए और जगह भी एक होनी चाहिए। इस पर इश्काल होता है कि अभी तो आपने हमें बताया इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह के नजदीक ये शिरकत सनाएअ और शिरकत तकबुल जायज ही नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि इमाम जुफर और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक जगह और पेशा एक ही होना चाहिए। इससे तो पता चला इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है भाई शिरकत आमाल। तो इसका जवाब शारहीन देते हैं कि दरअसल इस सिलसिले में इमाम जुफर रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हैं, उनकी एक रिवायत के मुताबिक शिरकत तकबुल और शिरकत आमाल जायज ही नहीं है और उसको पीछे जिक्र कर दिया साहिब हिदाया ने, और दूसरी रिवायत के मुताबिक शिरकत तकबुल और शिरकत आमाल जायज तो है लेकिन दोनों का पेशा एक होना चाहिए और दोनों के अमल की जगह एक होनी चाहिए, तो उसको अब वो यहां पर जिक्र कर रहे हैं, इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दूसरी रिवायत को यहां जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं खिलाफन लि मालिक व जुफर रहिमहुमल्लाह तआला फीहिमा, बखिलाफ इमाम मालिक और इमाम जुफर रहिमहुमल्लाह के इन दोनों के अंदर यानी जगह और मकान के अंदर, लिअन्न अलमान अलमुजव्विज़ा लिश्शिरकती, इसलिए क्योंकि वो इल्लत जो शिरकत को जायज करार देने वाली है, मैंने आपको बतलाया था फिका की किताबों में माना का लफ्ज आए तो इसका माना कभी कभार इल्लत के भी होते हैं, तो यहां माना का क्या तर्जमा करेंगे इल्लत के, लिअन्न अलमान अलमुजव्विज़ा लिश्शिरकती, इसलिए क्योंकि वो इल्लत जो शिरकत को जायज करार दे रही है, वह हुआ मा ज़कर ना हो, और वो है जिसको हमने जिक्र कर दिया। भाई शिरकत का मकसद क्या था अभी बताया, नफा हासिल करना, नफे में शिरकत जो है वो मकसद है। तो कहते हैं लिअन्न अलमान अलमुजव्विज़ा लिश्शिरकती, इसलिए क्योंकि शिरकत को जायज करार देने की जो इल्लत है वह हुआ मा ज़करनाहू, और वो है जिसको हमने जिक्र कर दिया, ला यतफावतु, उसमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों का पेशा अलग हो या एक हो या दोनों की जगह अलग हो या एक हो, इससे नफे के अंदर शिरकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है भाई, फिर इबारत जरा देख लो, लिअन्न अलमान अलमुजव्विज़ा लिश्शिरकती, इसलिए क्योंकि वो इल्लत जो शिरकत को जायज करार दे रही है, भाई वो इल्लत क्या है दरमियान में बतलाया, वह हुआ माजा करना हो, वो है जिसको हमने जिक्र कर दिया, यानी नफे में शिरकत मकसद है। जरा इन लफ्जों को निकाल दें और फिर इबारत जोड़ें, कहते हैं लिअन्न अलमान अलमुजव्विज़ा लिश्शिरकती ला यतफावतु, इसलिए क्योंकि वो इल्लत जो शिरकत को जायज करार दे रही है, ला यतफावतु, वो मुख्तलिफ नहीं होती, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जगह के एक होने से या बदलने से, या पेशे के एक होने से या बदलने से, उस इल्लत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा यह जायज है भाई। आगे देखिए, वलौ शारतल अमल निस्फैनी, शारता यहां भी देखो तस्निया का सिगा है, वलौ शारता, और अगर दोनों ने शर्त लगाई अल अमल निस्फैनी, काम के आधा आधा होने की, तो भाई दोनों दर्जी हैं, दोनों ने आपस में शिरकत का अकद कर लिया और तय यह पाया कि जो भी काम मिलेगा दोनों को वो दोनों आपस में आधा आधा करेंगे, लेकिन नफे में कमी बेशी तय कर ली, जैद चूंकि ज्यादा माहिर दर्जी है तो उसने कहा कि जितना भी नफा और उजरत मिलेगी 70% मैं लूंगा, 30% सिर्फ तुम लोगे, तो क्या यह जायज है कि अमल के अंदर बराबरी की शर्त लगाएं, काम दोनों को बराबर करना पड़ेगा और नफा एक का ज्यादा हो, तो याद रखो हमारे नजदीक यह जायज है भाई। तो कहते हैं वलौ शारतल अमल निसफैनी, और अगर दोनों ने अमल के आधा आधा होने की शर्त लगाई, वल माल असलासा, और माल की यानी नफे के तीन हिस्से होने की शर्त लगाई, जाजा, तो यह जायज है। माल के तीन हिस्से होने की शर्त लगाई, मसलन जैद कहता है कि मैं दो हिस्से लूंगा तीन में से और अमर सिर्फ एक हिस्सा लेगा, तो देखो नफे में कमी बेशी कर रहे हैं। तो कहते हैं वल माल असलासा, और माल के तीन हिस्से होने की शर्त लगाई दोनों ने, जाजा, तो यह जायज है। और याद रखो ये इस्तेहसानन जायज है, कियास तो ये तकाजा करता है, ये जायज नहीं होना चाहिए भाई जी। ये जायज नहीं होना चाहिए, याद रखो हमारा जाबता भाई, एक कीमती जाबता याद रखो, हमारा जाबता है कि असल के अंदर बराबरी हो और नफे में कमी बेशी हो, ये शिरकत माल और शिरकत आमाल में जायज है जी। असल के अंदर बराबरी हो और नफे में कमी बेशी हो, यह हमारे नजदीक जायज है। किसमें? शिरकत माल में भी और शिरकत आमाल के अंदर भी। शिरकत माल का बयान पीछे गुजर गया, शिरकत मुफावजा और शिरकत ईनान, वहां दोनों अपना अपना माल मिलाकर फिर अक्द शिरकत करते हैं, तो वो थी शिरकत माल, और ये शिरकत उस सनाया जो है ये है शिरकत आमाल। तो शिरकत माल के अंदर असल क्या था? माल। असल क्या था? माल। और शिरकत अमाल में असल क्या है? अमल। तो हमारे नजदीक असल के अंदर बराबरी हो, चाहे माल हो चाहे अमल हो, और नफे में कमी बेशी हो, यह जायज है। तवज्जो है। अलबत्ता शिरकत वजूह में यह जायज नहीं है, शिरकत वजूह का बयान आगे आने वाला है। शिरकत वजूह इसे कहते हैं, याद रखो कि दो आदमी है लेकिन उनके पास माल नहीं है, मसलन जैद भी बड़ा अच्छा ताजिर था, अमर भी बड़ा अच्छा ताजिर था, लेकिन ऐसा नुकसान हुआ कि दोनों का सारा माल डूब गया, बिल्कुल कंगाल हो गए, माल खत्म हो गया। अब जैद और अमर दोनों आपस में अकद कर लेते हैं कि भाई माल ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, लेकिन हमारी ताजिरों से वाकफियत है, ताल्लुकात हैं, ताजिर हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, लिहाजा हम दोनों उधार माल लिया करेंगे और फिर उस उधार माल को आगे बेच दिया करेंगे, और जो पैसे आएंगे तो वो जो माल हमने उधार लिया था उसके समन अदा कर देंगे, और जो नफा जायद बचेगा वो हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे। इसको कहते हैं शिरकत वजूह भाई। क्या कहते हैं? शिरकत वजूह। वजूह जमा है वजहुन की भाई, वजहुन चेहरे को कहते हैं। तो यहां भी दोनों अपनी शनासाई और पहचान और ताल्लुकात के जरिए क्या करते हैं? शिरकत। या ये वजूह वजाहत से है और वजाहत इज्जत को कहते हैं। तो यहां पर भी दोनों उधार माल ले रहे हैं और उधार माल उसी को मिलता है जिसकी ताजिरों के यहां इज्जत होगी, जिसकी इज्जत नहीं उसे उधार माल भी नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? शिरकत वजूह कहते हैं भाई। तो जिसकी इज्जत होगी उसी को माल मिलेगा, जिसकी ताजिरों का इज्जत नहीं वो उसको उधार भी माल नहीं देंगे। तो याद रखो ये जो शिरकत वजूह है इसके अंदर दोनों आपस में तय करते हैं कि हम दोनों उधार माल लेंगे और इस माल के अंदर हम दोनों का हिस्सा निसफ निसफ होगा, या एक मसलन कहता है मेरा हिस्सा दो सुलूस होगा और तुम्हारा हिस्सा एक सुलूस होगा। तो इसमें ये जो शिरकत वजूह है इसके अंदर भी दोनों के पास माल नहीं होता और उधार माल ये खरीदते हैं, और इसके अंदर याद रखो जितना जितना जमान दोनों पर आएगा उस माल का उतना ही नफा भी मिलेगा दोनों को, यहां कमी बेशी की गुंजाइश नहीं जी। यहां कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। अगर माल लेते हैं और दोनों कहते हैं जमान दोनों पर आधा आधा आएगा तो नफा भी दोनों में आधा आधा तकसीम होगा, और अगर माल लेते हैं इस शर्त पर कि जमान के तीन हिस्से होंगे, दो हिस्से जैद पर आएगा और एक हिस्सा अमर पर आएगा, तो नफे के अंदर भी इसी तरह तीन हिस्से करेंगे, दो हिस्से जैद को मिलेंगे और एक हिस्सा अमर को मिलेगा। मालूम हुआ शिरकत वजूह के अंदर जितना जमान है उतना ही नफे में भी हिस्सा होगा, अगर नफे के अंदर कमी बेशी करेंगे तो फिर तो रिफ मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी। जमान मसलन दोनों पर जमान निसफ निसफ आ रहा है और जैद कहता है नफा मैं 70% लूंगा, तो जैद को ये जो 20% जायद नफा मिल रहा है ये तो रिफ मालम युजमन है, ऐसी चीज का नफा है जिसका जमान जैद पर नहीं आ रहा और यह जायज नहीं। तवज्जो है, आपने पढ़ा रिफ़ु मालम युज़मन सिर्फ मुज़ारबत में जायज है और वो भी खिलाफुल कियास क्योंकि वो अहादीस से साबित है, बाकी किसी जगह भी रिफ़ु मालम युज़मन जायज नहीं है। तो शिरकत वजूह का बयान आगे आएगा और वहां साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि शिरकत वजूह के अंदर जितना जमान आएगा दोनों पर उसी के बकदर नफे के भी मुस्तहिक होंगे। भाई बात समझ में आ गई। तो बात इस वक्त चल रही थी शिरकत अमाल की भाई, और शिरकत अमाल के अंदर हमारे नजदीक नफे के अंदर कमी बेशी जायज है क्योंकि हमारा जाब्ता क्या है कि असल के अंदर बराबरी हो, यानी माल या अमल में बराबरी हो और नफे के अंदर कमी बेशी हो, यह जायज है। हासिल कलाम यह कि हमारे नजदीक शिरकत में असल के अंदर बराबरी और नफे के अंदर कमी बेशी जायज है, शिरकत माल में भी और शिरकत अमाल में भी, लेकिन शिरकत वजूह में यह जायज नहीं है। हमारे नजदीक आकद शिरकत के अंदर असल में बराबरी हो और नफे में कमी बेशी हो तो यह शिरकत माल में भी जायज और शिरकत अमाल में भी जायज है। असल में बराबरी हो और नफे में कमी बेशी हो, लेकिन शिरकत वजूह में यह जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वलौ शारतल अमल निस्फैनी, और अगर दोनों शरीकों ने अमल के आधा आधा करने की शर्त लगाई, वल माल असलासा और माल के तीन हिस्से होने की शर्त लगाई, जाजा तो यह जायज है, वह फिल कियास ला यजूजू और कियास के अंदर यह जायज नहीं है। मैंने बतलाया ये इस्तेहसानन जायज है, कियास के मुताबिक तो यह जायज नहीं। तो कहते हैं ये इस्तेहसानन जायज है, वह फिल कियास ला यजूजू और कियास में यह जायज नहीं है, लिअन्न जमान अभी कदर अमली, इसलिए क्योंकि जमान जो है वह अमल के बकदर है। दोनों ने आधा आधा काम करना है तो मालूम हुआ अमल का जमान दोनों पर आ रहा है आधा आधा, हर एक आधे अमल का जामिन है भाई। तो कहते हैं लिअन्न ज़मान बिक़द्र अमली, इसलिए क्योंकि जमान जो है वो अमल के बकदर है, फ़ज़्यादतु अलैहि रिफ़ु मा लम युज़मन, तो इस पर ज्यादती करना ये रिफ़ु मा लम युज़मन है और वो तो जायज नहीं, फलम यजुज़िल अक़्दु, तो ये अक़द जायज नहीं है। कियास ये तकाजा करता है, यह अक़द जायज नहीं होना चाहिए कि अमल आधा आधा करेंगे और नफे में कमी बेशी होगी। तो कहते हैं फलम यजुज़िल अक़्दु, तो कियास ये तकाजा करता है कि अक़द जायज नहीं होगा, लितअदियतिही इलैही, इसलिए क्योंकि यह अक़द जो है इस रिफ़ु मा लम युज़मन तक पहुंचा देगा और यह तो जायज नहीं है भाई। वसारा का शिरकतिल वजूही, और ये शिरकत सनाइअ जो है ये भी शिरकत वजूह की तरह हो गया, और शिरकत वजूह के अंदर तो रिफ़ु मा लम युज़मन जायज नहीं, तो लिहाजा शिरकत अमाल के अंदर भी रिफ़ु मा लम युज़मन जायज नहीं होगा। कियास ये तकाजा करता है, लेकिन इस्तेहसानन हमने कहा जायज है, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। लाकिन्ना नकूलु, लेकिन हम कहते हैं मा याखुज़ुहु ला याखुज़ुहु रिबहन, हम कहते हैं ये जो नफा हासिल हो रहा है और जिसको दोनों आपस में तकसीम कर रहे हैं ये नफा है ही नहीं जी। वैसे इसको नफा कहते हैं लेकिन ये नफा नहीं भाई। क्यों नहीं नफा कहते हैं? ये नफा नहीं, ये उजरत है जी। ये नफा नहीं, ये उजरत है। नफा तो उसको कहते हैं कि जब नफा भी उसी चीज की जिंस में से हो जो असल था, जो सरमाया था जी। जब दोनों की तरफ से माल था तो उसी माल के अंदर नफा आया, तो देखो असल सरमाया भी माल था और नफा भी माल है, तो दोनों की जिंस एक है, तो इसको ये जो ज्यादती हुई है इसको नफा कहते हैं। जब सरमाए की और नफे की जिंस एक हो तो इसको रिबहुन यानी नफा कहते हैं, और अगर दोनों की जिंस एक ना हो तो इसको रिबहुन नहीं कहते। यहां पर दोनों की तरफ से जो असल है वो तो अमल है, माल तो है ही नहीं, दोनों अमल करेंगे और नफा जो है वो माल है जी। उजरत मिली वो क्या है? माल है। तो असल जो है वो अमल और जो नफा मिल रहा है वो है माल, तो दोनों की तो एक जिंस नहीं। जब एक जिंस नहीं तो ये नफा है ही नहीं। जब नफा नहीं है तो मालूम हुआ ये जो माल मिल रहा है ये इनके अमल की उजरत है, और अमल की उजरत तो मुख्तलिफ होती है, वो तो जो दो आदमी आपस में तय कर लें। आप एक मजदूर को लेकर आते हैं, आप उसको बताते हैं ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, वो कहता है मैं इसके 1500 रुपए लूंगा, देखो मालूम हो उसने अपने अमल की क्या कीमत लगाई, 1500। अगर आप भी राजी हो जाते हैं तो ठीक है, आप वो काम कर लेगा, आप पैसे दे देंगे। लेकिन अगर आप राजी नहीं होते, आप जाकर एक और मजदूर को ले आते हैं, उसने सारा काम देखा, उसने कहा मैं 1000 रुपए में ये काम कर दूंगा। मालूम हो उसने अपने अमल की क्या कीमत लगाई, 1000। और अगर आप भी उस पर राजी हो जाते हैं तो वो उसी 1000 में वो काम कर देगा। मालूम हुआ यहां पर जो दो आदमियों ने आपस में आपसे शिरकत किया है उसके अंदर असल वो अमल है, और अमल की कीमत तो कीमत लगाने से तय होती है। एक ही शख्स का अमल है, हो सकता है आप उसकी कीमत 1000 रुपया लगाएं, दूसरे आदमी के पास जाए हो सकता है उसी काम की वो 1500 रुपए दे दे। मालूम हो उसने उसकी कीमत कितनी लगा दी, 1500 रुपए लगा दी। मालूम हो ये जो दोनों को उजरत मिलेगी ये अमल की कीमत है, और अमल की कीमत तो मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा दोनों अमल आधा आधा करें और उजरत में कमी बेशी करें। ये मालूम हुआ एक के अमल की ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दें और एक के अमल की कम कीमत मुकर्रर कर दें, ये तो जायज है भाई। तो हमारे नजदीक दोनों अगर ये शर्त लगा ले कि अमल आधा आधा होगा और नफे में कमी बेशी होगी तो ये जायज है भाई। तो कहते हैं लाकिन ना नकूलू, लेकिन हम कहते हैं मा याखुदुहू ला याखुदुहू रिबहन, कि इन दोनों में से हर एक जो माल लेता है वो बतौर नफे के नहीं लेता। लिअन्न रिबहा इंद इत्तेहादिल जिन्स, इसलिए क्योंकि नफा जो है वो तो इत्तेहाद जिन्स के वक्त होता है, यानी जब असल और नफा दोनों की जिन्स एक हो, असल भी क्या हो माल और नफा भी क्या हो माल, तो फिर इसको नफा कहते हैं। और अगर असल अमल है और नफा माल है तो इसको ये हकीकत में नफा है ही नहीं, ये उजरत है, ये उजरत है अमल की भाई। तो कहते हैं लिया नर्रिब हाइंद तिहादिल जिनसी, इसलिए क्योंकि नफा जो है वो जिन्स के मुतहिद होते वक्त होता है। वकद इख्तलफा, और तहकीक यहां तो जिन्स मुख्तलिफ है। लिया नरअसल माल अमल, इसलिए क्योंकि रसुल माल जो है सरमाया जो है वो तो दोनों का अमल है। व रिब माल, और नफा जो है वो माल है। फकान बदल अमली, तो ये माल जो है ये अमल का बदल है। वल अमल यतकवमु बितकवीमी, और अमल जो है वो तो कीमत वाला होता है कीमत लगाने से। फयतकद्दरु बिकद्री मा कुविम बिही, तो यह मुकर्रर होगा उसी के बकदर जिसके साथ इसकी कीमत लगाई जाए। अमल की कीमत तो वही होगी जो दोनों आपस में तय कर लें, दोनों काम आधा आधा करेंगे, लेकिन नफे में कमी बेशी कर रहे हैं। मालूम हुआ एक के अमल की ज्यादा कीमत लगा रहे हैं और दूसरे के अमल की कम कीमत लगा रहे हैं, और यह तो जायज है भाई। तो कहते हैं वल अमल यतकवमु बितकवीमी, और अमल जो है वो कीमत वाला बनता है कीमत लगाने की वजह से। फयतकद्दरु बिकद्री मा कुविम बिही, तो ये मुकर्रर होगा उसी के बकदर जिसके साथ इसकी कीमत लगाई जाएगी। फला यहरुमु, लिहाजा ये हराम नहीं होगा। फला यहरुमु, ये हराम नहीं होगा। इसको वो मतन से जोड़ें फिर बात समझ में आएगी। मतन में क्या आया था, अगर दोनों अमल के आधा आधा करने की शर्त लगाएं और नफे की कमी बेशी की शर्त लगाएं तो ये जायज है, ये जायज है। और हमने ये सारी दलील जिक्र कर दी, मालूम हुआ ये हराम नहीं होगा। ये हराम नहीं, कयास को ये तकाजा करा था, ये हराम होना चाहिए, जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिफू मालम युजमन की खराबी लाजिम आती है। लेकिन बतलाए ये यहां तो नफा है ही नहीं, ये तो अमल की उजरत है भाई। तो फला यहरुमु, लिहाजा ये नफे की कमी बेशी हराम नहीं होगी। तो कहते हैं फला यहरुमु, तो ये नफे की कमी बेशी हराम नहीं होगी। बिखिलाफ शिरकतिल वजूही, हां बतलाया था कि शिरकत वजूह के अंदर, शिरकत वजूह में दोनों उधार माल लेते हैं, और जिस पर जितना माल का जमान आएगा यानी जितने समन जिसके जिम्मे आएंगे उसी के बकदर नफा भी तकसीम करेंगे, वहां पर नफे की कमी बेशी जायज नहीं, वहां नफा बकदरे जमान ही होगा, तो उसमें नफे की कमी बेशी जायज नहीं। और बतलाया था कि यह शिरकत सनाया जो है यह भी शिरकत वजूह जैसी हो गई, और शिरकत वजूह के अंदर तो उतना ही नफा मिलेगा जितना जमान आएगा, लिहाजा शिरकत आमाल के अंदर भी जितना अमल दोनों पर आएगा उसी के बकदर नफा भी होना चाहिए। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई, ये शिरकत अमाल में तो हमने आपको बता दिया कि यहां पर यह नफा है ही नहीं, यहां तो नफा है ही नहीं, ये तो उसके अमल की उजरत है। जबकि शिरकत वजूह के अंदर बेशक माल उधार लेकर आते हैं, लेकिन होता तो माल है और फिर उसी माल से नफा कमाते हैं, तो वहां पर वो असल सरमाया भी माल होता है और नफा भी माल होता है, वहां एक ही जिंस होती है। तो लिहाजा वहां पर तो अगर नफे के अंदर कमी बेशी करेंगे तो रिबहु मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी, लेकिन शिरकत अमाल के अंदर तो रिबहु मालम युजमन की खराबी नहीं लाजिम आती, क्योंकि शिरकत अमाल में तो नफा है ही नहीं, हमने उसका नाम रिबहु यानी नफा रखा हुआ है, असल में तो वह अमल की उजरत है। भाई बात समझ में आ गई। लिहाजा यह कहना कि यह शिरकत सनाया जो है यह शिरकत वजूह जैसी हो गई, और शिरकत वजूह में तो नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं, तो शिरकत अमाल में भी कमी बेशी जायज नहीं होनी चाहिए, यह बात हमें कबूल नहीं है। भाई तो कहते हैं बिखिलाफ ही शिरकतिल वजूह, ही बखिलाफ शिरकत वजूह के, लिअन्न जिन्सल माल मुत्तफिकुन, इसलिए क्योंकि वहां पर जिनसे माल मुत्तफिक है, वो जो उधार लाए हैं वो भी माल और जो नफा है वो भी माल। तो कहते हैं लिअन नजिन सलमाल मुत्तफिकुन, इसलिए क्योंकि वहां पर जिनसे माल मुत्तफिक है, वह रिप हो यतहक्ककु फिल जिन्स अल मुत्तफिकी, और एक ही जिन्स के अंदर तो नफा पाया जाता है, जो लेकर आए थे वो हजार रुपए का माल था और बेचा तो वसूल कितने हुए 1100 रुपए, तो देखो माल कितने का था 1000 दिरहम का और बेचा तो कितने में 1100, तो नफा जो है वो भी माल है और जो सरमाया था वो भी माल था। भाई तो कहते हैं वर्रिब हो यतहक्ककु फिल जिन्स अल मुत्तफिकी, और नफा जो है वो तो जिनसे मुत्तफिक के अंदर पाया जाता है, यानी एक ही जिन्स के अंदर पाया जाता है। वर्रिब हो मालम युजमन ला यजूजु इल्ला फिल मुजारबती, और रिब हो मालम युजमन वो तो जायज नहीं है सिवाय मुजारबत के, सिर्फ मुजारबत में रिब हो मालम युजमन जायज है और वो भी खिलाफुल कियास हदीस से साबित है, क्योंकि मुजारबत के अंदर नुकसान हुआ तो सारा रबुल माल का होगा और नफे में दोनों शरीक हैं, मालूम हुआ मुजारिब को जो नफा मिल रहा है उसके ऊपर तो जमान नहीं आ रहा, तो रिबहु मालम युजमन की खराबी लाजिम आती है मुजारबत में, लेकिन वो खिलाफुल कियास हदीस से साबित है। भाई तो कहते हैं वरिबहु मालम युजमन ला यजूजु इल्ला फिल मुजारबती, और रिबहु मालम युजमन जायज नहीं है मगर मुजारबत में। आगे देखिए काल अवमा यतकब्बलुहु कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा, यहां से साहिब हिदाया यह बयान फरमा रहे हैं कि दोनों शरीक जो हैं, दोनों कारीगरों ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया, मसलन यह अक़्द किया कि आधा आधा अमल करेंगे, तो दोनों में से जो भी अमल को कबूल करेगा दूसरे को निस्फ अमल करना पड़ेगा, उस पर उस काम के करने का जमान है, यानी निस्फ अमल करना पड़ेगा। और इसी तरह जैसे अमल दोनों को करना पड़ेगा इसी तरह उजरत भी दोनों तलब कर सकते हैं, काम जैद ने लिया है और उजरत का मुतालबा जाकर अमर करता है तो अमर भी कर सकता है। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा यतकब्बलुहु कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा मिनल अमली, और वो अमल जो दोनों में से हर एक कबूल कर लेता है यलजमुहु वयलजमु शरीकहु, तो ये अमल उस पर भी लाजिम है और उसके शरीक पर भी लाजिम है। हत्ता अन्न कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा, यहां तक इन दोनों में से हर एक जो है युतालबु बिल अमली, उससे अमल का मुतालबा किया जा सकता है। वह युतालिबु बिल अजरी, और वो उजरत का मुतालबा भी कर सकता है। युतालबु बिल अमली, यहां फेले मजहूल पड़ेंगे, हर एक से अमल का मुतालबा किया जा सकता है। मसलन सूरत यह है जैद और अमर दोनों ने अक़्द शिरकत किया है, दोनों दर्जी हैं, तो लिहाजा अगर जैद किसी से काम लेता है कोई कपड़े वगैरह सीने का, तो उस काम का मुतालबा सिर्फ जैद से नहीं हो सकता बल्कि अमर से भी हो सकता है। और इसी तरह काम तो जैद ने लिया था और उसने काम किया है, लेकिन उजरत का मुतालबा अमर भी कर सकता है, तो दोनों मुतालब भी हुए कि इनसे मुतालबा किया जाएगा अमल का, और दोनों मुतालिब भी हुए कि वो उजरत का मुतालबा कर सकते हैं। तो ये माना है कि हत्ता अन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा, यहां तक इन दोनों शरीकों में से हर एक जो है युतालबु बिल अमली, उससे अमल का मुतालबा किया जा सकता है। वह युतालिबु बिल अजरी, और दोनों में से हर एक जो है वह उजरत का मुतालबा कर सकता है। वह यबरउ दाफिउ बिद्दफ़ इलैही, दाफिउ का माना है देने वाला, हवाले करने वाला, यानी उजरत हवाले करने वाला, उजरत देने वाला, चाहे जैद को उजरत दे दे चाहे अमर को दे दे, दोनों सूरतों में उजरत अदा हो गई, दोनों सूरतों में उजरत अदा हो गई। यह माना है वयबरउ दाफिउ, और उजरत देने वाला बरी हो जाएगा, बिद्दफ़ इलैही, दोनों में से हर एक के हवाले करने से। वहां दा जाहिरुन फिल मुफावजती, और यह मुफावजा के अंदर तो जाहिर है। भाई इधर देखिए, याद रखो, याद रखो, जहां किताबु शिरकत हमने शुरू की थी तो वहां इब्तिदा के अंदर ही साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि ये शिरकत जो है चार किस्म पर है। साहिबे हिदाया ने कुदूरी का मतन जिक्र फरमाया था और साहिबे कुदूरी फरमाते हैं कि शिरकत चार किस्म पर है, एक शिरकत मुफावजा है, एक शिरकत ऐनान है, एक शिरकत सनाएह है और एक शिरकत वजूह है। आपने पढ़ा कि जो शिरकत ऐनान और शिरकत मुफावजा है यह शिरकत माल के अंदर होती है, अलबत्ता फर्क यह है कि शिरकत मुफावजा में बराबरी होती है हर चीज के अंदर, जबकि शिरकत ऐनान में हर चीज में बराबरी नहीं होती, और शिरकत ऐनान में दोनों शरीक एक दूसरे के सिर्फ वकील होते हैं, लेकिन शिरकत मुफावजा के अंदर हर एतबार से बराबरी होती है, तो लिहाजा वहां पर दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी होते हैं और कफील भी होते हैं। एक पर जो दैन लाजिम होगा तिजारत की वजह से, दूसरे से भी उसका मुतालबा हो सकता है, दूसरे से भी उसका मुतालबा हो सकता है। और फिर तीसरी किस्म शिरकत की जो है वह शिरकत शिरकत सनाएह है, जिसमें दो कारीगर या दो पेशे वाले आपस में किसी काम के अंदर, अमल के अंदर शिरकत कर लेते हैं। और चौथी किस्म जो है वो शिरकत वजूह है भाई, शिरकत वजूह है भाई। तो साहिब कुदूरी ने यह तकसीम फरमाई कि शिरकत चार किस्म पर है, एक शिरकत मुफावजा है, एक शिरकत ऐनान है, एक शिरकत सनाएह है और एक शिरकत वजूह है भाई। तो बजाहिर इससे शुबा लगता है कि शायद शिरकत सनाएह अलग चीज है, अलग किस्म है, उसके अंदर मुफावजा और ऐनान नहीं हो सकता। इसी तरह इस तकसीम से शुबा होता है कि शायद शिरकत वजूह भी वो मुफावजा और ऐनान से अलग चीज है, इसके अंदर मुफावजा और ऐनान नहीं हो सकता। हालांकि उलमा फरमाते हैं कि शिरकत सनाएह जो है वो मुफावजा के तरीके पर भी हो सकती है और ऐनान के तरीके पर भी हो सकती है, इसी तरह शिरकत वजूह जो है वो भी मुफावजा के तरीके पर भी हो सकती है और ऐनान के तरीके पर भी हो सकती है भाई। बात समझ में आ गई। तो बाज उलमा ने और तकसीम की जो ज्यादा बेहतर है, वो फरमाते हैं कि दो आदमी जो आपस में अकदे शिरकत करते हैं, या तो ये शिरकत जो है माल के अंदर होगी, या ये शिरकत अमाल के अंदर होगी, या ये शिरकत वजूह के अंदर होगी, या तो शिरकत माल में होगी या शिरकत अमाल के अंदर होगी या शिरकत वजूह के अंदर होगी, और फिर इन तीनों में से हर एक या तो मुफावजा के तरीके पर होगी या ऐनान के तरीके पर होगी। मुफावजा के अंदर मैंने बतलाया हर चीज के अंदर बराबरी होती है, नफे के अंदर भी, नुकसान के अंदर भी, माल के अंदर भी, तसरुफात के अंदर भी, और दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी होते हैं और कफील भी होते हैं। जबकि शिरकत ऐनान के अंदर, माल के अंदर बराबरी शर्त नहीं, नफे नुकसान के अंदर बराबरी शर्त नहीं है, और उसमें सिर्फ दोनों शरीक एक दूसरे के वकील तो होते हैं, अलबत्ता कफील और जामिन नहीं होते। तो बाज उलमा फरमाते हैं कि शिरकत जो है वो तीन किस्म पर है, या तो वो शिरकत माल में होगी, या वो शिरकत अमाल में होगी, या वो शिरकत वजूह में होगी, और फिर इनमें से हर एक या तो वो मुफावजा होगी कि हर चीज में बराबरी होगी, या वो ऐनान होगी कि हर चीज में बराबरी नहीं होगी। मालूम हो शिरकत माल जो है वो शिरकत मुफावजा भी हो सकती है अगर हर चीज में बराबरी हो, और वह शिरकत ऐनान भी हो सकती है अगर हर चीज में बराबरी न हो। इसी तरह शिरकत अमाल जो है उसमें भी अगर हर चीज के अंदर बराबरी है, अमल के अंदर भी, नफे के अंदर भी, नुकसान के अंदर भी, तो यह शिरकत मुफावजा होगी, और अगर हर चीज में बराबरी नहीं है तो फिर यह शिरकत ऐनान है। इसी तरह शिरकत वजूह के अंदर भी अगर हर चीज में बराबरी है तो यह शिरकत मुफावजा है, वरना यह शिरकत ऐनान है। तो हासिल यह कि शिरकत की छह किस्में हो गई भाई, शिरकत माल, शिरकत अमाल और शिरकत वजूह, फिर इनमें से हर एक या वो मुफावजा होगी या ऐनान होगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पर बात चल रही है शिरकत सनाएह की। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि शिरकत सनाएह के अंदर दोनों शरीकों में से जो शरीक भी अमल को कबूल करेगा, सिर्फ उसी से अमल का मुतालबा नहीं हो सकता बल्कि उसके शरीक से भी अमल का मुतालबा हो सकता है। मालूम है शरीक भी इसका कफील है, शरीक इसका कफील है और जामीन है, जब भी तो काम एक ने लिया है और मुतालबा दूसरे से भी हो सकता है, और नीज उजरत का मुतालबा भी दोनों कर सकते हैं। काम तो जैद ने लिया था किसी से, लेकिन अमर भी जाकर उजरत का मुतालबा कर सकता है। तो शिरकत उस सनाए के अंदर दोनों कारीगरों से अमल का मुतालबा भी हो सकता है और दोनों कारीगर उजरत का मुतालबा भी कर सकते हैं, उजरत का मुतालबा भी कर सकते हैं। तो अब साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि इससे तो पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के कफील हैं, ये दोनों एक दूसरे के कफील हैं और जामिन हैं, और यहां ये शिरकत उस सनाया चल रही है। और शिरकत उस सनाया जो है उसके अंदर जब दोनों ने आपस में अकदे शिरकत किया था तो या तो हर चीज में बराबरी जिक्र की थी तो फिर तो ये शिरकत उस सनाया मुफावजा हो गई, और अगर हर चीज में बराबरी जिक्र नहीं की थी तो फिर ये शिरकत उस सनाया जो है ये ऐनान हो गई भाई। तो अगर ये दोनों कारीगरों ने शिरकत मुफावजा की है फिर तो दोनों से अमल का मुतालबा होना और दोनों का उजरत का मुतालबा करना, फिर तो यह बात जाहिर है, यह बात समझ में आती है। जब शिरकत मुफावजा है तो हर चीज में बराबरी है, लिहाजा हर एक से अमल का मुतालबा भी हो सकता है और हर एक उजरत का मुतालबा भी कर सकता है। लेकिन अगर ये दोनों कारीगरों ने आपस में शिरकत ऐनान की हो तो शिरकत ऐनान में तो दोनों एक दूसरे के सिर्फ वकील होते हैं, कफील नहीं होते, तो फिर कैसे दोनों से अमल का मुतालबा हो सकता है और फिर कैसे दोनों उजरत का मुतालबा कर सकते हैं जब यह शिरकत सनाया जो है वह ऐनान हो। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि शिरकत मुफावजा में तो दोनों का एक दूसरे का कफील होना जाहिर है, लेकिन शिरकत ऐनान के अंदर भी यहां पर दोनों एक दूसरे के कफील होंगे, और यह हुक्म इस्तेहसानन है, यह हुक्म इस्तेहसानन है कि अमल के मुतालबे में और उजरत के मुतालबे में दोनों एक दूसरे के कफील हैं, यह हुक्म इस्तेहसानन है। वैसे तो ऐनान के अंदर दोनों शरीक एक दूसरे के कफील नहीं होते, लेकिन यहां शिरकत सनाए के अंदर अगरचे शिरकत ऐनान ही क्यों ना की हो दोनों ने आपस में, फिर भी दोनों एक दूसरे के कफील हैं अमल और उजरत के मुतालबे में। भाई बात समझ में आ गई जी। देखिए भाई कहते हैं वहादा जाहिर उन फिल मुफावजती, और ये बात मुफावजा के अंदर तो जाहिर है, ये बात मुफावजा के अंदर तो जाहिर है, यानी ये जो कारीगरों ने आपस में शिरकत की है, अगर शिरकत मुफावजा की है फिर तो ये बात जाहिर है कि दोनों से अमल का भी मुतालबा हो सकता है और दोनों उजरत का भी मुतालबा कर सकते हैं। तो ये शिरकत सनाया अगर शिरकत मुफावजा है फिर तो दोनों का एक दूसरे का कफील होना जाहिर है। तो कहते हैं वहादा जाहिर उन फिल मुफावजती, और यह अमल का दोनों पर लाजिम होना यह मुफावजा के अंदर तो जाहिर है। वफी गैरिह इस्तेहसान, और इसके अलावा के अंदर यह इस्तेहसान है, यानी ऐनान के अंदर यह इस्तेहसान है। वल कियास खिलाफ जालिका, और कियास इसके बरखिलाफ है। कियास तो यह तकाजा करता है कि अगर दोनों कारीगरों ने आपस में शिरकत ऐनान की है तो जिसने काम लिया है उसी से मुतालबा होना चाहिए, दूसरे से मुतालबा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन दोनों से मुतालबा हो सकता है। तो कहते हैं वल कियास खिलाफ जालिका, और कियास इसके बरखिलाफ है। लिअन्न शिरकत वकअत मुतलकतन, इसलिए क्योंकि शिरकत मुतलक होकर वाकई हुई है। भाई देखिए ना, दो कारीगरों ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया तो या तो वो लफ्ज़ मुफावजा जिक्र करेंगे या हर चीज में बराबरी जिक्र कर देंगे तो वो भी मुफावजा ही है, तवज्जो है। या दूसरी सूरत यह है, दोनों आपस में मुतलकन शिरकत कर लेते हैं, ऐनान को जिक्र नहीं करते, लेकिन हर चीज में बराबरी नहीं। जब हर चीज में बराबरी नहीं तो मालूम हुआ यह कौन सी शिरकत है, ऐनान है। चाहे इन्होंने ऐनान को जिक्र नहीं किया लेकिन जब हर चीज में बराबरी नहीं है तो ये मुतलक शिरकत भी कौन सी होगी, शिरकत ऐनान होगी भाई। तो जब दोनों ने आपस में मुतलक शिरकत की है तो फिर तो एक दूसरे के कफील नहीं है, जब कफील नहीं है तो एक ने जो अमल कबूल किया है दूसरे पर वो लाजिम नहीं होना चाहिए, कियास ये तकाजा करता है। लेकिन इस्तेहसानन एक ने जो अमल कबूल किया है वो दूसरे पर भी लाजिम होगा भाई। तो यह माना है वल कियास खिलाफ जालिका, और कियास इसके बरखिलाफ है। लिअन्न शिरकत वकअत मुतलकतन, इसलिए क्योंकि शिरकत जो है मुतलक होकर वाकई हुई है। वल कफालतु मुक्तज़ल मुफावजती, और कफील होना यह तो मुफावजा का मुक्तजा है, कफील होना इसका तकाजा तो शिरकत मुफावजा करती है, शिरकत ऐनान तो इसका तकाजा नहीं करती, लिहाजा कियास यह तकाजा करता है इन दोनों को एक दूसरे का कफील नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वल कफालतु मुक्तजल मुफावजती, और कफालत जो है वो तो मुफावजा का मुक्तजा है। वजहुल इस्तेहसानी, अब इस्तेहसान की वजह जिक्र कर रहे हैं कि बेशक दोनों कारीगरों ने आपस में मुतलक शिरकत की है या ऐनान शिरकत की है, फिर भी इस्तेहसानन दोनों एक दूसरे के कफील होंगे। तो उसकी अब वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहाद ही शिरकत मुक्तजियत लिजमानी, कि यह शिरकत जो है जमान का तकाजा करती है, यह शिरकत जमान का तकाजा करती है कि एक शख्स पर अमल लाजिम हो रहा है तो दूसरे पर भी अमल लाजिम होना चाहिए, उस पर भी इस अमल का जमान आना चाहिए, इसीलिए तो वह दूसरा उजरत का मुस्तहिक बनता है। तवज्जो है, इधर देखिए भाई, जैद और अमर दो कारीगर हैं, दोनों ने आपस में अक़्दे शिरकत कर लिया कि हम दोनों लोगों से अमल कबूल किया करेंगे और दोनों मिलकर आधा आधा काम किया करेंगे, तो लिहाजा जैसे इस अमल का मुतालबा जैद से हो सकता है, इसी तरह इस अमल का मुतालबा अमर से भी हो सकता है, और नीज ये शिरकत जमान का तकाजा करती है। तो यह शिरकत जमान का तकाजा करती है कि जिस अमल का तकाजा जैद से हो सकता है उस अमल का तकाजा अमर से भी होना चाहिए, इसीलिए तो अमर उजरत का मुस्तहिक बनेगा कि उस पर अमल का जमान आ रहा है, अगर उस पर अमल का जमान ही नहीं फिर तो उसे नफे का मुस्तहिक ही नहीं होना चाहिए। मसलन देखो, मसलन जैद ने किसी से काम कबूल कर लिया और जैद ने खुद ही वो काम पूरा करके उसको वापस दे दिया और उजरत वसूल कर ली जैद ने, उजरत जैद ने वसूल कर ली, तो यह काम किसने कबूल किया था? जैद ने, और पूरा भी किसने किया? जैद ने, और उजरत भी किसने ले ली? जैद ने। तो इस उजरत के अंदर तो अमर का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि काम भी जैद ने कबूल किया, अमल किया भी जैद ने, तो लिहाजा यह उजरत जैद की होनी चाहिए, लेकिन बेशक अकेला जैद अमल कर दे फिर भी अमर उजरत का मुस्तहिक है। क्यों मुस्तहिक है? जमान की वजह से, क्योंकि अमर पर भी उस अमल का जमान आता है। वो शख्स जिसने अपना काम जैद के हवाले किया था वो शख्स अमर से भी जाकर मुतालबा कर सकता है कि मसलन मैंने कपड़े तुम्हें सीने के लिए दिए थे, अब लाओ वो सिले हुए कपड़े मेरे हवाले करो। तवज्जो है, तो यहां पर अगरचे एक शरीक ही अमल क्यों ना करे दूसरा फिर भी नफे के अंदर और उजरत के अंदर मुस्तहिक बनता है क्योंकि वो अमल का जामिन है भाई। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहाद ही शिरकत मुक्तजियत लिजमानी, कि यह शिरकत जो है जमान का तकाजा करती है। अला तारा अन्नमा यतकब्बलुहु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मिनल अमली, कि आप देखते नहीं कि इन दोनों में से हर एक जो भी अमल कबूल कर ले, ये मिनल अमल ये बयान है मा यतकब्बलुहु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा का, दोनों में से जो भी एक चीज को कबूल कर ले मीनल अमली यानी कि अमल को, तो ये मीनल अमल बयान है माया तकब्बलहू का, तो लिहाजा इस मा की जगह इस अमल को ले आए तर्जमे में फिर बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा। कहते हैं अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्ना मा यतकब्बलहू कुल वाहिदिन मिनहुमा मिनल अमली, कि दोनों में से हर एक जिस अमल को भी कबूल कर ले मजमून अलल आखरी, वो अमल दूसरे पर भी मजमून होता है, दूसरे पर भी उसका जमान आता है, यानी उससे भी उस अमल का मुतालबा किया जा सकता है। वलिहादा यस्तहिकुल अजरा बिसबबी नफादी तकबुलिही अलैही, वलिहादा यस्तहिकुल अजरा, और इसीलिए वो उजरत का मुस्तहिक बनता है। बिसबबी नफादी तकबुलिही अलैही, इसलिए क्योंकि उसके साथी का कबूल करना वो इस पर भी नाफिज होता है, इसका साथी भी जो अमल कबूल करेगा वो इस पर भी नाफिज है, उसका मुतालबा इससे भी हो सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलिहादा यस्तहिकुल अजरा, और इसी वजह से यह उजरत का भी मुस्तहिक बनता है। बिसबबी नफाज़ी तकब्बुलिही अलैही, इस वजह से कि इसके साथी का कबूल करना वो इस पर भी नाफिज होता है। फजरा मजरल मुफावजती फी ज़मानिल अमली वक्तिज़ाइल बदली, तो ये जो शिरकत है, ये जो शिरकत है चाहे मुतलक हो चाहे ऐनान हो, ये मुफावजा के कायम मकाम है। ये शिरकत किसका तकाजा करती है? जमान का, लिहाजा ये मुफावजा के कायम मकाम है। जैसे मुफावजा के अंदर दोनों एक दूसरे के कफील होते हैं यानी जामिन होते हैं, इसी तरह जहां मुतलक शिरकत भी करेंगे तो वो भी शिरकत ईनान है। तो यहां मुतलक शिरकत या ईनान जो है वो भी मुफावजा के कायम मकाम है। तो ये माना है फजारा मजरल मुफावजती, तो ये शिरकत भी मुफावजा के कायम मकाम है। फिर जमान इल अमली, अमल के जमान में, वक्त एजा इल बदली, और बदल का तकाजा करने में, यानी उजरत का तकाजा करने में। तो लिहाजा अमल के जमान के अंदर भी ये मुफावजा के कायम मकाम है, और उजरत का तकाजा करने में भी ये मुफावजा के कायम मकाम है। तो याद रखो ये जो दो कारीगरों ने शिरकत की, चाहे ये शिरकत ईनान के तरीके पर ही क्यों ना हो, दोनों से अमल का भी मुतालबा हो सकता है और दोनों उजरत का मुतालबा भी कर सकते हैं। तो इन दो चीजों के अंदर ये शिरकत ईनान भी शिरकत मुफावजा की तरह है, ये शिरकत ईनान भी शिरकत मुफावजा की तरह है, सिर्फ इन दो चीजों में कि अमल का जमान दोनों पर आएगा और उजरत का मुतालबा दोनों कर सकते हैं। बाकी चीजों के अंदर ये शिरकत ईनान शिरकत मुफावजा की तरह नहीं है। शिरकत मुफावजा के अंदर तो हर चीज के अंदर बराबरी जरूरी होती है, और नीज शिरकत मुफावजा के अंदर तो एक पर जो दैन लाजिम होता है दूसरे पर भी वो दैन लाजिम हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। तो ये शिरकत ईनान ये मुफावजा की तरह है अमल और उजरत के मुतालबे में, और चीजों में ये मुफावजा के कायम मकाम नहीं है। भाई ये माना है फजरा मजरल मुफावजती फी जमान इल अमली वक्त जा इल बदली, तो ये शिरकत जो है मुफावजा के कायम मकाम है अमल के जमान में और बदल का तकाजा करने में, और बाकी चीजों में ये मुफावजा के कायम मकाम नहीं है। भाई आगे देखिए काल व अम्मा शिरकतुल वजूही फर रजुलानी यश्तरीकानी। भाई अब शिरकत वजूह का जिक्र आ गया, मैंने आपको बताया शिरकत वजूह इसे कहते हैं दो आदमी आपस में शिरकत कर लेते हैं, माल उनके पास नहीं है लेकिन ताजिरों के साथ उनका ताल्लुक है, ताजिरों का इन पर एतमाद है, ताजिर इनकी इज्जत करते हैं तो ये ताजिरों से उधार माल लेते हैं और उसको आगे बेचते हैं, और उसके जरिए वो उस चीज के समन भी अदा करते हैं और नफा भी आपस में तकसीम करते हैं। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह अम्मा शिरकतुल वजूही, तो शिरकत वजूह जो है फर रजुलानी यश्तरीकानी, तो वो ये है कि दो आदमी आपस में शिरकत कर लेते हैं, वला माला लहुमा इस हाल में कि दोनों का कोई माल नहीं है, अला अन यश्तरिया बि वजूहिहिमा इस शर्त पर कि दोनों जो है अपने चेहरों के जरिए खरीदेंगे, बि वजूहिहिमा अय बि वजाहतिहिमा अपनी वजाहत के जरिए खरीदेंगे, और वजाहत का माना है इज्जत, दोनों अपनी इज्जत और एतमाद के जरिए दूसरों से माल खरीदेंगे। तो कहते हैं वह अम्मा शिरकतुल वजूही फर रजुलानी यश्तरीकानी, तो शिरकत वजूह जो है वो ये है कि दो आदमी आपस में शिरकत कर लेते हैं, वला माल लहुमा इस हाल में कि दोनों का कोई माल नहीं है, अला अन यश्तरिया बि वजूहिहिमा व यबीआ इस शर्त पर के दोनों जो हैं वो अपनी वजाहत के जरिए खरीदेंगे, व यबीआ और बेचेंगे, फतसिहु शिरकतु अला हादा तो इस शर्त पर शिरकत सही है, सुमियत बिही अब वजह जिक्र कर रहे हैं शिरकत वजूह को शिरकत वजूह क्यों कहते हैं, कहते हैं सुमियत भी ही इस शिरकत को शिरकत वजूह के नाम के साथ मौसूम किया गया, लिया नहुला यश्तरी बिन नसीअति इसलिए क्योंकि उधार नहीं खरीद सकता, इल्ला मन कान लहू वजाहतुन इंदन नासी मगर वही शख्स जिसकी इज्जत हो लोगों के नजदीक वही उधार खरीद सकता है, और यहां भी उधार माल खरीदते हैं इसलिए इसको शिरकत वजूह कहते हैं। वह इन नमा तसिह मुफावजतन और ये शिरकत वजूह जो है ये सही है मुफावजतन मुफावजा होने के एतबार से भी और ईनान होने के एतबार से भी सही है। तो कहते हैं वह इन नमा तसिह मुफावजतन और ये शिरकत वजूह बेतबार मुफावजा के भी सही है, लिअन्नहु युमकिनु तहकीकुल कफालती वल कफालती फिल अबदाली, लिअन्नहु युमकिनु इसलिए क्योंकि मुमकिन है तहकीकुल कफालती वल वकालती कफालत और वकालत को साबित करना, फिल अबदाली बदलों में कफालत और वकालत का साबित करना यहां भी मुमकिन है, यहां भी मुमकिन है। देखो दो आदमी ने आपस में शिरकत कर ली है कि उधार माल लेंगे और बेचेंगे और नफे में शरीक होंगे, तो यहां पर भी दुकानदारों से ये माल लेंगे तो समन इन दोनों के जिम्मे आ गए, ये समन ईवज है वो जो मबिया उधार ले रहे हैं उसका, भाई तो दोनों पर समन आ गए, और फिर आगे ये किसी को बेचेंगे तो इनके जिम्मे होगा कि अब ये मबिया उस मुश्तरी के सुपुर्द करें, पहले इनके जिम्मे क्या थे समन नहीं, तवज्जो दो आदमियों ने आकदे शिरकत किया ताजिरों से उधार माल लाते हैं तो ताजिरों से इन्होंने माल ले लिया और इनके जिम्मे क्या आ गए समन आ गए जो इन्होंने बाद में अदा करने हैं, फिर इस उधार माल को ये आगे ले गए और इन्होंने बेचा, तो जब बेचेंगे तो मुश्तरी से समन लेंगे और इनके जिम्मे आ गया कि अब ये मबीआ मुश्तरी के सुपुर्द कर दें। तवज्जो है, तो ताजिरों से माल लिया तो वहां इनके जिम्मे समन आ गए और आगे उसको बेचा तो इनके जिम्मे मबीआ आ गया कि मबीआ मुश्तरी के हवाले करें। और समन और मबीआ ये एक दूसरे के बदल होते हैं और बदलों के अंदर आप जानते हैं वकालत भी सही है और कफालत भी सही है। मैं आपको भेजता हूं कि जाओ जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ, तो देखो समन आपको देने पड़ेंगे और मबीआ आप लेकर आएंगे और इसके अंदर देखो वकालत भी सही है और इसी तरह इसमें कफालत भी सही होती है भाई। तो कहते हैं वह इन नमा तसिह मुफावजतन, और यह शिरकत वजूह जो है मुफावजा के एतबार से भी सही है। लिया नहुयुम किनु तहकीकुल कफालती वल वकालती फिल अबदाली, इसलिए क्योंकि बदलों के अंदर कफालत और वकालत का साबित करना मुमकिन है। वह इदा उतलिकत, और जब इस शिरकत वजूह को मुतलक रखा जाए, तकूनु इनानन, तो फिर यह शिरकत इनान होगी। लिया न मुतलका हुयन सरिफु इलैही, इसलिए क्योंकि मुतलक आकदे शिरकत जो है वह इसी की तरफ पलट जाता है। भाई मुतलकन अक्द शिरकत किया जाए तो वो शिरकत ऐनान पर महमूल होता है, तो वो शिरकत ऐनान होता है, शिरकत मुफावजा नहीं, क्योंकि मुफावजा के अंदर तो दोनों एक दूसरे के कफील भी होते हैं, जामिन भी होते हैं, तो वहां मुफावजा का लफ्ज जिक्र करना जरूरी है या कफालत को जिक्र करना जरूरी है भाई। तो कहते हैं लिअन्न मुतलकहु यनसरिफु इलैही, इसलिए क्योंकि मुतलकन अक्द शिरकत जो होता है वो शिरकत ऐनान की तरफ पलट जाता है, यानी उससे वही मुराद होता है। वही जाइज़तुन इंदना, और ये हमारे नजदीक जायज है, यानी शिरकत वजू हमारे नजदीक जायज है। तो कहते हैं वही जाइज़तुन इंदना, और ये शिरकत वजू हमारे नजदीक जायज है। खिलाफन लि शाफिई रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के। वलवजह मिनल जानिबैन मा कद्दमनाहु फी शिरकति तकब्बुली, और दोनों तरफ से जो वजह है वो है जिसको हमने मुकदम कर दिया शिरकत तकब्बुल में। शिरकत तकब्बुल में हमने आपको बताया था, शिरकत तकब्बुल वही शिरकत सनाए, वहां बतलाया था कि इमाम शाफी और इमाम जुफर मुमला के नजदीक यह शिरकत आमाल जायज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो माल नहीं है, और हालांकि नफा जो है वह तो माल की फरा होता है, तो उसके लिए माल चाहिए, जबकि हमारे नजदीक नफा जो होता है उसकी निस्बत आकद की तरफ की जाती है, माल की तरफ नहीं। लिहाजा शिरकत सनाए भी सही अगरचे माल नहीं, और शिरकत वजूह भी सही अगरचे इसमें भी दोनों का कोई माल नहीं है भाई। तो कहते हैं वही जाइज़तुन इंदना, और ये शिरकत वजू हमारे नजदीक जायज है। खिलाफ अली शाफी रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के। वलवजह मिनल जानिबैनी, और दोनों जानिब से जो वजह है यानी जो दलील है, मा कद्दमनाहु, वो है जिसको हमने मुकद्दम जिक्र कर दिया, फी शिरकत तकब्बुली, शिरकत तकब्बुल यानी शिरकत सनाए के अंदर। काल वकुल वाहिद मिनहुमा वकीलुल आखरी फी मा यश्तरीह, यहां से बतला रहे हैं कि शिरकत वजूह के अंदर भी दोनों एक दूसरे के वकील होंगे, इसलिए क्योंकि दोनों का तसारुफ एक दूसरे पर नाफिज हो रहा है, और किसी शख्स का तसारुफ दूसरे पर नाफिज नहीं हो सकता इल्ला ये कि उस पर उसको विलायत हासिल हो या उसकी तरफ से वो वकील हो गई, और विलायत तो यहां हासिल नहीं। दोनों शरीक जो हैं आकिल बालिग आजाद आदमी हैं, तो किसी को दूसरे पर विलायत हासिल नहीं कि एक का तसारुफ दूसरे पर खुद ब खुद नाफिज हो जाए, नहीं भाई। बाप को तो बेटे पर विलायत होती है, लेकिन ये दो शरीक जो हैं इनको तो एक दूसरे पर विलायत नहीं, लेकिन तसारुफ एक दूसरे पर नाफिज हो रहा है, तो मालूम हुआ यहां वकालत है, क्योंकि दूसरे पर तसरुफ नाफिज होने की दो ही सूरतें हैं कि उस पर या आपको विलायत हासिल हो या आप उसकी तरफ से वकील हो भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वकुल वाहिद मिन हुमा वकील उल आखरी, और दोनों में से हर एक जो है वो दूसरे का वकील है। फी मा यश्तरी ही, उस चीज में जो वो खरीदे। लिअन्न तसर्रुफा अलल गैरी, इसलिए क्योंकि गैर पर तसर्रुफ जो है ला यजूज़ू, वो जायज नहीं होता। इल्ला बि वकालतिन औ बि विलायतिन, मगर वकालत या विलायत से। वला विलायता, और यहां कोई विलायत नहीं है। फयतअय्यनुल वकालतु, तो वकालत मुतअय्यन हो गई, दोनों एक दूसरे के वकील हैं। फइन शाराता, अगर दोनों ने यह शर्त लगा दी कि अन्नल मुश्तरा बैनहुमा निस्फानी, कि खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान आधी आधी होगी। दो आदमियों ने आपस में अक्द शिरकत कर लिया कि हम उधार माल लेंगे, और यह तय किया कि हम ताजिरों से जो भी माल लेंगे वो मेरे और तुम्हारे दरमियान आधा आधा होगा, यानी अगर नुकसान आया तो आधा आधा नुकसान दोनों पर आएगा। तो जितना जमान आएगा याद रखो नफा भी उसी के बकदर होना चाहिए, यहां नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं फइन शरता, अगर दोनों ने यह शर्त ठहरा लिया क्या नलमुश्तरा बैनहुमा निस्फानी कि खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान आधी आधी होगी, वर रिबह का जालिका और नफा भी इसी तरह होगा यानी आधा आधा होगा, यजूज तो यह जायज है, वला यजूज अन यतफाज़ला फीही और यह जायज नहीं है कि नफे के अंदर दोनों कमी बेशी करें। अगर नफे के अंदर कमी बेशी की शर्त भी लगा दी तो यह शर्त बातिल है और नफा जमान के बकदर ही होगा भाई। तो कहते हैं वला यजूज अन यतफाज़ला फीही और यह जायज नहीं है कि नफे के अंदर कमी बेशी करें, व इन शरता और अगर दोनों ने यह शर्त लगा दी अन यकून अल मुश्तरा बैनहुमा असलासा कि खरीदी हुई चीज जो है दोनों के दरमियान वो तीन हिस्से होगी यानी दो हिस्से एक के होंगे और एक हिस्सा एक का, तो फर्रिब हो कजालिक तो नफा भी इसी तरह होगा। फिर देख लीजिए वह इन शरता और अगर दोनों ने यह शर्त ठहरा लिया कि यकून अल मुश्तरा बैनहुमा असलासा कि खरीदी हुई चीज जो है दोनों के दरमियान तीन हिस्से होंगे, फर्रिब हो कजालिक तो नफा भी इसी तरह होगा, वहां जाली अन रिफ ला युस्तहक इल्ला बिल माली अविल अमली अव बिल जमानी। भाई यहां से बतला रहे हैं कि जो हमने कहा कि शिरकत वजूह के अंदर नफे के अंदर बराबरी जरूरी है यानी जितना जमान किसी पर आएगा नफे में भी उसका उतना ही हिस्सा होगा। कहते हैं वजह यह कि कोई भी शख्स जो नफे का मुस्तहिक बनता है या तो वह माल की वजह से नफे का मुस्तहिक बनता है या अमल की वजह से नफे का मुस्तहिक बनता है या जमान की वजह से, नफे का मुस्तहिक कोई शख्स कितनी वजह से बनता है, तीन वजह से, या तो माल होगा उसका या उस पर जमान आ रहा होगा इसलिए या उसका अमल होगा भाई। तो कहते हैं वहादा और यही इस वजह से लिअन्न रिबह ला युस्तहक कि नफा जो है उसका इस्तेहकाक नहीं होता, इल्ला बिल माली अबिल अमली अव बिल जमानी या तो माल के जरिए या अमल के जरिए या जमान के जरिए, फरब्बुल माली यस्तहिक, अब वजाहत कर रहे हैं हर एक की, कहते हैं फरब्बुल माली यस्तहिक हू बिल माली। इधर देखिए दो आदमियों ने अक़्द मुजारबत कर लिया, माल जैद का है और अमल और तिजारत अमर करेगा तो जैद को भी नफा मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि जैद का माल है, और अमर को भी नफा मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका अमल है। और इसी तरह आप देखते हैं कि कोई कारीगर होता है, कारीगर है गाड़ियों का मैकेनिक वगैरह है, तो उसके पास और लोग काम सीखने के लिए आते हैं तो उस्ताद जो है लोगों से काम लेता है और उनके सुपुर्द करता है कि इस काम को करके दो, और उस्ताद जो है वो आधी उजरत उस काम करने वाले को देता है और आधी उजरत खुद रख लेता है। तो यहां ये हालांकि उस्ताज का ना माल है ना उस्ताज ने अमल किया लेकिन फिर भी वो नफे का मुस्तहिक बना, क्यों, वजह ये कि उस्ताज पर जमान आ रहा है, काम उसने लिया है लोगों से तो लोग आकर उससे मुतालबा करेंगे भाई। तो यहां उस्ताज जो नफे का मुस्तहिक बन रहा है वो किसकी वजह से है, जमान की वजह से। तो कहते हैं फरब्बुल माल यस्तहिकुहु बिल माल, तो रब्बुल माल जो है वो नफे का मुस्तहिक होता है माल की वजह से, वल मुजारिबु यस्तहिकुहु बिल अमली और मुजारिब जो है वो नफे का मुस्तहिक होता है अमल की वजह से, वल उस्ताजु और वो उस्ताज अल्लज़ी युल्किल अमला अला तिल्मीज़ बिन निस्फ़ जो काम को शागिर्द पर डालता है निसफ के बदले में, कि निसफ तुम्हें इवज़ मिलेगा, पूरा इवज़ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं बे जमानी, ये उस्ताज नफे का मुस्तहिक है जमान की वजह से। फिर तर्जमा देख लीजिए, वल उस्ताजु और वो उस्ताज अल्लज़ी युल्किल अमला अला तिल्मीज़ बिन निस्फ़ जो अपने शागिर्द पर निसफ के बदले अमल को डाल देता है, ये उस्ताज नफे का मुस्तहिक होता है बे जमानी जमान की वजह से, वला युस्तहक बिमा सिवाहा और इन तीन के अलावा किसी और वजह से नफे का इस्तेहकाक नहीं होता, अला तारा क्या आप देखते नहीं, अन मन काल अली गैरी ही कि किसी शख्स ने दूसरे से कहा तसर्रफी मालिका कि तू अपने माल में तसर्रुफ कर, जैद अमर से कहता है, इधर देखिए जैद अमर से कहता है कि तुम अपने माल के साथ कारोबार करो लेकिन शर्त यह है नफा आधा मेरा हुआ करेगा, तो मुझे बताइए क्या अमर इस बात पर तैयार होगा, ना जैद अमल कर रहा है ना उसका जमान है ना उसका माल है और वो नफे के अंदर शरीक बनना चाहता है। नहीं भाई, इस तरह नफे के अंदर वो शरीक नहीं हो सकता। तो कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं अन्ना मन काल अली गैरी ही, कि जिस शख्स ने दूसरे से कहा तसर्रफ ही मालिका, कि तू अपने माल में तसर्रुफ कर, अला अन अली रिबहू, इस शर्त पर कि मेरे लिए उसका नफा होगा, लम यजूज, तो ये जायज नहीं, ले आदमी हादिहिल मानी, ये इल्लतें न होने की वजह से, ये इल्लतें न होने की वजह से, न वहां उसका माल है, न जमान है और न अमल है भाई। तो कहते हैं लम यजूज, ये जायज नहीं है, ले आदमी हादिहिल मानी, इन इल्लतों के न होने की वजह से, वस्तहकाक रिबह फी शिरकतिल वुजूह बिज़मानी, और नफे का जो इस्तेहकाक होता है शिरकत वुजूह के अंदर, बिज़मानी, वो जमान की वजह से होता है। दो आदमी उधार माल ला रहे हैं तो दोनों पर समन का जमान आ रहा है भाई, उसकी वजह से नफे में भी शिरकत है। तो कहते हैं वस्तहकाक रिबह फी शिरकतिल वुजूही, और शिरकत वुजूह के अंदर जो नफे का इस्तेहकाक होता है, बेजमानी, वो जमान की वजह से होता है, अलामा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, वह जमान वाला कदर इल्मिल के फिल मुश्तरा, और जमान जो है खरीदी हुई चीज में मिल्कियत के बकदर होता है। जैद और अमर दोनों ने शिरकत वजूह कर ली कि हम उधार माल लेंगे, और ताजिरों से हम जो भी माल उधार लेंगे हम दोनों पर आधा आधा जमान आएगा, अगर नुकसान हो गया तो दोनों को आधा आधा भरना पड़ेगा। तो देखो यहां पर खरीदी हुई चीज में दोनों की मिल्कियत कितनी है, आधी आधी, क्योंकि जमान आधा आधा है, तो खरीदी हुई चीज में मिल्कियत भी आधी आधी होगी, और उसी की वजह से फिर नफा भी आधा आधा तकसीम होगा भाई। तो कहते हैं वह जमान वाला कदर मिल की फिल मुश्तरा, और जमान जो है खरीदी हुई चीज में मिल्कियत के बकदर होता है, वका नर्रे फुजा इदो अलैही, और वो नफा जो इस मिल्कियत पर जायद हो, रिबह मालम युजमन, वो रिबह मालम युजमन है, फला यसे खुश तेरा तो हो, तो लिहाजा इस जायद नफे की शर्त लगाना सही नहीं, इल्ला फिल मुजारबती, मगर मुजारबत में, वल वजूह लैसत फी मानाहा, और वजूह जो है वो मुजारबत के माना में नहीं, वजूह मुजारबत के माना में नहीं, लिहाजा मुजारबत वाला हुक्म नहीं दिया जा सकता। मुजारबत में तो रिबह मालम युजमन जायज है, लेकिन वजूह जो है वो मुजारबत के माना में नहीं भाई। किस तरह? कहते हैं भाई मुजारबत के अंदर माल का जमान सिर्फ रब्बुल माल पर आता है, मुजारिब पर उसका जमान नहीं आता, जबकि शिरकत वजूह में दोनों पर जमान आता है भाई। और नीज मुजारबत में एक अमल करता है और शिरकत वजूह में दोनों अमल करते हैं, तो ये शिरकत वजूह किसी भी एतबार से मुजारबत की तरह नहीं है। तो मुजारबत में तो रिफू मालम युजमन जायज है, लेकिन ये वजूह तो मुजारबत की तरह नहीं, लिहाजा इसमें रिफू मालम युजमन जायज नहीं होगा। तो कहते हैं वल वजूह लैसत फी मानाहा, और शिरकत वजूह जो है ये मुजारबत के माना में नहीं है, बिखिलाफिल इनानी, बखिलाफ शिरकत इनान के, लिअन्नहु फी मानाहा, इसलिए क्योंकि शिरकत इनान ये मुजारबत के माना में है, मिन हैसु इन कुल वाहिद मिनहुमा यअमलु फी माल साहिबिही। भाई इधर देखिए, मुजारबत में माल एक का होता है और उस माल के अंदर दूसरा शख्स अमल करता है, इसी तरह शिरकत इनान में भी माल दोनों का होता है और दोनों अमल करते हैं। जब दोनों अमल कर रहे हैं तो हर शरीक अपने माल में भी अमल कर रहा है और अपने साथी के माल में भी अमल कर रहा है। तो जैसे मुजारबत में मुजारिब जो है दूसरे के माल में अमल करता है, इसी तरह शिरकत इनान में भी हर शरीक दूसरे के माल में अमल करता है। तो शिरकत इनान किसकी तरह हो गई? मुजारबत की तरह। लिहाजा शिरकत इनान में तो रिबह मालम युजमन जायज है, यानी नफे की कमी बेशी जायज है, लेकिन शिरकत वजूह तो मुजारबत की तरह नहीं, तो उसमें रिबह मालम युजमन जायज नहीं, यानी नफे की कमी बेशी जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इनान, बखिलाफ इनान के, लिअन्नहु फी मानाहा, इसलिए क्योंकि इनान जो है वो मुजारबत के माना में है, मिन हैसु, इस हैसियत से, कि नकुल वाहिद मिन हुमा, कि इन दोनों शरीकों में से हर एक जो है, या अमलु फी माल साहिबी ही, वो अमल करता है अपने साथी के माल में, फयुल हकु बिहा, लिहाजा इनान को मुजारबत के साथ मिलाया जाएगा और उसके अंदर नफे की कमी बेशी जायज होगी। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई? यहां एक एतराज होता है, एतराज ये कि आपने हमें बताया कि मुजारबत के अंदर रिबह मालम युजमन लाजिम आता है और रिबह मालम युजमन तो जायज ही नहीं, लेकिन मुजारबत में खिलाफुल कियास रिबह मालम युजमन जायज है क्योंकि हादीस मुबारका से इसका सबूत है। भाई तो जो चीज खिलाफुल कियास हो उस पर तो दूसरी चीज को कियास नहीं किया जा सकता। भाई कियास तो उस चीज पर किया जाता है जो खुद अकल के मुताबिक हो। जब एक चीज अकल के मुताबिक है तो दूसरी चीज को भी उस पर कियास कर लिया जाता है, और एक चीज हमारी अकल में ही नहीं आ रही, हमें उसकी वजह ही समझ में नहीं आ रही, तो उसके साथ दूसरी चीज को कैसे मिलाया जा सकता है। तो मुजारबत के अंदर रिबह मालम युजमन जायज है खिलाफुल कियास। भाई तो जब मुजारबत खुद खिलाफुल कियास है तो ऐनान को मुजारबत पर कियास करते हुए ऐनान के अंदर भी रिबह मालम युजमन जायज करार नहीं दिया जा सकता, हालांकि आप फरमा रहे हैं कि ऐनान को भी मुजारबत वाला हुक्म दे दिया गया। जैसे मुजारबत में रिबह मालम युजमन जायज है, इसी तरह ऐनान में भी रिबह मालम युजमन जायज होगा। तो जवाब याद रखना, जवाब याद रखना कि हम ऐनान को मिला रहे हैं मुजारबत के साथ, यानी ऐनान को वही हुक्म दे रहे हैं जो मुजारबत का है। तो इसके लिए जरूरी है कि मुजारबत जो है उसको भी खिलाफुल कियास करार न दिया जाए। लिहाजा हम यूं कहेंगे, इधर देखिए कि भाई यहां मुजारबत को भी कियास के मुताबिक करार दिया जाएगा, फिर ही ऐनान को मुजारबत वाला हुक्म दिया जा सकता है। और वो इस तरह कि मुजारबत के अंदर माल तो रब्बुल माल का है और नफे का मुस्ताहिक मुजारी भी बन रहा है, हालांकि उसका कोई माल नहीं है लेकिन फिर भी वह नफे का मुस्ताहिक बन रहा है। वो दर असल अपने अमल की वजह से नफे का मुस्ताहिक बन रहा है, और जब अपने अमल की वजह से नफे का मुस्ताहिक बन रहा है तो इस एतबार से मुजारबत खिलाफुल कियास नहीं बल्कि कियास के मुताबिक है। भाई क्योंकि कोई शख्स अमल करे तो उसको उजरत दी जाती है। भाई जैसे इजारे के अंदर है, भाई आप एक मजदूर को लाते हैं, वह आपके लिए अमल करता है तो आप उसको उसकी उजरत देते हैं। लिहाजा मुजारबत के साथ ऐनान उसी सूरत में मिलाया जा सकता है जब मुजारबत को भी कियास के मुताबिक करार दे दिया जाए, और मुजारबत कियास के मुताबिक है बाई लिहाज कि मुजारबत के अंदर मुजारिब जो नफे का मुस्तहिक बन रहा है वो अपने अमल की वजह से बन रहा है। तो जब अपने अमल की वजह से मुजारिब नफे का मुस्तहिक बन रहा है तो मुजारबत खिलाफुल कियास न रही, कियास के मुताबिक हो गई। जब यह कियास के मुताबिक हुई तो इस पर ऐनान को कियास करना सही होगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बेहादा हुआ अल मराम। अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।